आप सुना रहे हो ये इतनी मधुर है कि कौन वो व्यक्ति होगा जो इस कथा को सुनना नहीं चाहेगा। तो वे कहते हैं स्टार्ट में ही 10th कैंटो के, निवृत्त तर्षे रूपगीय माना भवोष दाक्षोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादान पुमान विराजेत विना पशुघ्नात्। वो कहते हैं कि ये जो कथा आप सुना रहे हो और आपके मुख से बहती ये झरझर झरझर बहती हुई जो अमृतमय सरिता है, ये जो बह रही है ये मेरे कर्ण रंध्रों के माध्यम से मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर मेरे हृदय को आप्लावित कर रही है, और इस प्रकार से ना मुझे भूख लगी है ना प्यास लगी है, और इस भव रोग को दूर करने वाली इस औषधि को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ, आप बस सुनाते रहो सुनाते रहो। और कौन इसे सुनना नहीं चाहेगा, केवल वह व्यक्ति जो कि आत्मघाती है या कसाई है। और जब सुखदेव गोस्वामी ने यह देखा कि मेरा श्रोता जो है वो सुनने के लिए बहुत आतुर है, तो उनको भी बड़ा उत्साह आ गया। नहीं तो कई बार क्या होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी पॉइंट डिस्कस किया था कि भागवत क्लास में अगर कभी कभी जब फोकस नहीं रहता है तो नींद आ जाती है, व्यक्ति सो जाता है, या फिर प्रसंग कहीं का कहीं चला जाता है, मन भटकने लगता है और पता नहीं चलता है। तो कभी कभी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को चेक करते थे। तो जैसे उन्होंने एक बात कही कि अघासुर का वध हुआ और ब्रजवासियों का 1 साल के बाद पता चला और वो आगे बढ़ गए, तो तुरंत परीक्षित ने रोका, बोला अरे ऐसा क्यों कहा आपने, इस 1 साल में क्या हुआ बताओ। और तब सुखदेव गोस्वामी ने पूरी ब्रह्म विमोहन लीला सुनाई, नहीं तो वो स्किप हो जाती थी भागवत में से। तो इस प्रकार से वो सुनाते थे। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो सुखदेव गोस्वामी को बड़ा जोश आ गया और उन्होंने भागवत का ये भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनाना शुरू किया। और उस बाल लीलाओं में भी जब वो आगे बढ़ते गए और 9वें अध्याय पे आए और जब दामोदर लीला की चर्चा करनी थी, तब उनको बड़ा और ज्यादा उत्साह आ गया कि वाह अभी तो दामोदर के बारे में सुनाएंगे। तो जैसे हम दूसरे फेस्टिवल भी जब मनाते हैं, इवन इस्कॉन में भी, तो जन्माष्टमी 1 दिन, गौर पूर्णिमा 1 दिन, राधाष्टमी 1 दिन, रामनवमी 1 दिन, नरसिंह चतुर्दशी 1 दिन, लेकिन इस दामोदर के महीने को पूरा महीना हम लोग, एंड इट्स अ वेरी एनचैंटिंग लीला ऑफ द लॉर्ड। तो वो जब सुनाने लगे तब सुखदेव गोस्वामी को भी बड़ा जोश आया और उनको बहुत ही अच्छी तरह से के सुनाने लगे। तो वो कहने लगे परीक्षित को, एकदा गृह दासेषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंतम स्वयं दधी। वो कहने लगे एकदा मतलब वंस अपॉन ए टाइम, एक दिन की बात है, परीक्षित सुन इस बात को। और वो एक दिन कौन सा दिन था, दिवाली का दिन था। तो बोले एकदा दिवाली के दिन ग्रह दासेषु, कि जितने भी ग्रह के जो दास दासियां थी, वो यशोदा ने क्या किया, कर्मांतर नियुक्तासु, उनको सबको काम पे लगा दिया। और आचार्य बताते हैं कि कृष्ण के घर पे कितनी दास दासियां थी पता है आपको? जैसे हमारे यहाँ पे हो सकता है किसी के घर पे 1 मेड हो या किसी के घर पे 2 हो, कोई ज्यादा ही किसी के पास हो तो 3 4, किसी सेलिब्रिटी के घर पे 10 15 हो सकते हैं। लेकिन कृष्ण के घर पे ऐसे बताते हैं कि कृष्ण के पास 4 प्रकार के नौकर थे। नंद बाबा के पास यशोदा नंद गेहनी, नंद रानी थी, उनका भवन बहुत बड़ा था, नंद भवन जो आज भी है वृंदावन में। तो और वो खेती बाड़ी करते थे, उनका व्यापार था, उनका काम था खेती करना। तो 4 प्रकार के नौकर थे। एक प्रकार का जो नौकर पूरे थे वो केवल खेती बाड़ी करते थे, नंद बाबा की जो खेती है वो संभालते थे, तो खेती पालन का कृषि का काम करते थे। दूसरे प्रकार के जो नौकर थे वो घर का घरेलू काम करते थे, घर की साफ सफाई और घर का जो दूसरा अन्य काम है वो करते थे। तीसरे प्रकार के जो नौकर थे वो गायों का पालन करते थे, क्योंकि नंद बाबा के पास कितनी गायें थी, 9 लाख, 1 2 नहीं। तो आजकल तो किसी के पास 1 या 2 मोटर कार हो तो ऐसा लगता है कि हमारे पास कितना कुछ है, लेकिन उस टाइम पशुधन हुआ करता था और वो भी गाय। तो 9 लाख गायें थी और 9 लाख गायों को संभालने के लिए कितने आदमी लगेंगे आप काउंट कर लो। तो उतने नौकर थे उनके पास जो सिर्फ गायों को रखते थे। और एक चौथे प्रकार के और नौकर थे स्पेशल, जो केवल कृष्ण को रखते थे क्योंकि कृष्ण बड़े नटखट थे, बहुत शरारती, तो उनको रखने के लिए पूरी कमेटी बनी थी कि वो कृष्ण का ध्यान रखते थे कि कृष्ण क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और उसके उपरांत भी कृष्ण क्या कुछ नहीं कर जाते थे। तो इतने सारे नौकर चाकर थे। तो यशोदा ने क्या किया कि इन सभी नौकर चाकर को अलग 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 कामों में लगा दिया और खुद उस दिन दिवाली के दिन सुबह उठ के नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के निर्ममंतम स्वयं दधी, वो स्वयं दही मथने के लिए बैठ गई। अभी कई आचार्य ने प्रश्न किया है कि सुखदेव गोस्वामी को क्या जरूरत थी इस वर्ड को कहने की स्वयं दधि, कि उसने स्वयं दधि मथना शुरू किया। तो इसका एक मतलब ये है कि इसके पहले शायद यशोदा ने दधि नहीं मथा था, या क्या होगा कारण। तो स्वयं दधि इसके पीछे वो कहते हैं कि यशोदा ने ऐसा सोचा कि मेरा कान्हा जो है ये बहुत दूसरों के घर में जाके मस्ती करता है, और दूसरों के घर में जब जाके मुंह मारता है तो ये गोपियां आके उल्हाने देती है। तो कांस्टेंट ये एक चीज था कि हर रोज यशोदा के घर पे इतनी सारी गोपियां आके अपना उल्हाना देती थी कि तुम्हारे कान्हा ने ये कर लिया, वो कर लिया, माखन चुरा लिया, हमारे ये कर लिया। उससे यशोदा को ऐसा लगा कि मेरा बेटा जो है वो दूसरों के घर में जा जा के माखन इसलिए खाता है कि शायद उसको हमारे घर का माखन अच्छा नहीं लगता रहेगा, क्योंकि नौकर बनाते हैं तो नौकर लोग अगर कोई कार्य करते हैं तो वो पैसे के लिए करते हैं या उसमें उतना प्रेम नहीं रहता है। लेकिन एक माँ अगर अपने पुत्र के लिए कोई कुछ चीज कर रही है तो उसमें बहुत प्रेम होता है कि नहीं। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि आप अगर अभी होटल में जाते हो तो होटल वाला क्या करता है कि सबसे पहले उस होटल के अंदर आप ऊपर बैठ सकते माता जी, आप यूपन सिटी है, तो होटल में आप जैसे जाओगे तो वहां पर एक दरबान खड़ा रहेगा जो एकदम मुस्कुराते हुए गेट खोलेगा आपके लिए, और गेट खोल के आपको अंदर लेगा, और बाद में वहां पे दूसरा एक वेटर रहेगा जो आपको वेलकम करेगा, और वेलकम करके और आपको पूछेगा आप कितने लोग हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो, 10 लोग हो, उस हिसाब से वो टेबल आपको लगा के ज्वाइन करके देगा। फिर बाद में आपके सामने मेनू ला के रखेगा, आपको बताएगा कि हमारे होटल में क्या क्या मिलता है, और समझो अगर उस मेनू में आपके पसंद का अगर कुछ है नहीं तो वो आपको कस्टमाइज करके भी देगा कि अच्छा ये चाहिए ये मैं बना के देता हूँ, कितना मिर्ची डालना है, कितना करना है, वो सब पूरा तरह से। और जब बन के आएगा तो बड़ा ही प्रेम से स्माइल देके आपको सर्व भी करेगा प्लेट में, और आपको जितना चाहिए उतना ही देगा। आप बोलोगे मेरे को एक ही टुकड़ा पनीर का दो तो एक देगा, आप बोलोगे ये मेरे को दो दो तो दो देगा, और इस तरह से। तो इतना मतलब प्रेम जता के व्यक्ति खिलाने की कोशिश करता है। और अभी केवल वो दिन आना बाकी है जब वेटर आपके बाजू में बैठ के और निवाला भी आपके मुंह में डालेगा उतना बच गया है खाली। लेकिन वो ये सब कुछ कर रहा है, वो प्रेम के वशीभूत नहीं कर रहा है, पैसा उसको टिप मिल रहा है उस चीज का, उसको वेतन मिल रहा है इसके लिए वो सब करता है, तो उसमें प्रेम नहीं है। लेकिन माँ जो अपने पुत्र या पुत्री के लिए जो भी कार्य करती है उसमें बहुत प्रेम रहता है, और उस प्रेम के वशीभूत वो सोचती है कि इसको क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा, इसका मन मर्जी का मैं क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। तो यशोदा ने सोचा कि क्योंकि इतने सारे नौकर चाकर है वो लोग बनाते रहते, शायद कृष्ण को पसंद नहीं है, और कृष्ण इसलिए दूसरों के घर में जा जाके माखन चुरा रहा है और यहाँ पर माखन नहीं खाता है, तो आज मैं खुद बैठ के अपने बेटे के लिए माखन बनाऊंगी। लेकिन एक माँ का ऐसा हृदय होता है कि आज चलो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करती हूँ खुद। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जहाँ जब यहाँ विजिट पे आते हैं अपने बच्चों के घर में, या हम कहीं पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं अभी हम बना के देते, बहुत टाइम से बाहर का खा रहा है या कुछ है करके। तो यशोदा सोची कि चलो मैं बैठ के बनाती हूँ, और यशोदा दही मथने के लिए बैठ गई, और इतने जो उल्हाने आते थे, इतने जो कंप्लेंट यशोदा को आते थे, उस वजह से यशोदा ने सोचा कि नहीं अभी बहुत हो गया। तो एक बार यशोदा ने कृष्ण को पूछा भी कि कान्हा तू इतना दूसरों के घर पे जा जा के खाता है और हमारे घर पे कोई दही की कमी है क्या, गोरस की कमी है, माखन की कमी है, हमारे घर पे बैठ के माखन क्यों नहीं खाता, इतना सारा माखन है। तो कृष्ण ने कहा कि मैं घर बैठ के खाना नहीं चाहता, मैं कुछ कमा के खाना चाहता हूँ। और उनका कमाने का स्टाइल ये था कि दूसरों के घर में जाके चोरियां करते थे। तो सारी की सारी गोपियां, हालांकि गोपियां माखन इसीलिए बनाती थी कि कृष्ण उसको आके ले, दूसरा कोई कारण ही नहीं था उनके माखन बनाने का, लेकिन क्योंकि कृष्ण के साथ नोक झोंक करना चाहते थे, आदान प्रदान करना चाहते थे। और आप सोचो भगवान जो है, भगवान का क्या ऑपुलेंस है, भगवान का डेफिनेशन आपको पता है कि जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से है वो भगवान है। तो भगवान को कभी भूख नहीं लगती, लेकिन इस दामोदर लीला के अंदर भगवान भूखे हैं, उसको भूख लगी है और हर जगह जाके माखन खा रहे हैं। भगवान को किसी से डर नहीं लगता है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर भगवान डर रहे हैं। भगवान को कभी गुस्सा नहीं आता और नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कृष्ण को बहुत गुस्सा आ रहा है। भगवान को कोई तरह की लालसा नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उनको लालसा है। और कितना कुछ है कि मतलब भगवान किसी के डर से भागते नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो यशोदा के डर से भाग रहे हैं, रो रहे हैं। भगवान कभी रोते नहीं है ना, अगर भगवान का आप डेफिनेशन पकड़ो तो लेकिन भगवान ने सारे अपने ऑपुलेंस जो है वो यहाँ पे दामोदर लीला में खत्म कर दिए, और किसी को ऐसा लगेगा कि भगवान का ऑपुलेंस कम हो गया, लेकिन वो ऑपुलेंस बढ़ा दिया। हम देखेंगे कैसे कैसे एक 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 करके वो भगवान जो है इस प्रकार से लीला करते हैं। तो वो गोपियों के घर में जाके माखन चुराते थे, और गोपियां एक बार पूरा सब लोग मिलके और कंप्लेंट करने के लिए आई यशोदा के पास। उन्होंने सोचा कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, अभी अब जाके यशोदा को बताना ही पड़ेगा। और पूरा का पूरा झुंड वो गोपियों का आ रहा था यशोदा के घर में, नंद भवन में। तो भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, उनको पता चल गया क्या होने वाला है। और वो ऊपर पे जाके टेरेस से देख लिया कि इतनी सब गोपियां आ रही है। तो भगवान तभी छोटे से बालक थे, 3 साढ़े 3 साल के, तो दौड़ के आए और पहले आके अपने माँ के पल्लू में छिप गए। और यशोदा देखने लगी कि क्या हो गया उसको, अचानक ऐसा आ गया। और फिर ये गोपियां सब आई, और एक एक सारी गोपियां आके और यशोदा को सबसे पहले कहने लगी कि हे यशोदा, या तो इस गांव में तुम रह सकती हो या हम रह सकती हैं, हम दोनों इस गांव में साथ में नहीं रह सकते, अपना गांव ले हो नंदरानी और यहाँ से फुटो तुम निकलो करके। तो यशोदा ने सोचा ऐसा क्या हो गया ये अचानक आज आके। और आप सोचो यशोदा कौन है, रानी है। एक बार ब्रजवासियों ने मिलके और नंद बाबा को जात बाहर कर दिया था, निकाल दिया उसको, बोला नहीं। तो ऐसे ब्रजवासियों का कभी कभी व्यवहार होता था कि नंद है तो क्या है। तो उन्होंने आके सबने यशोदा से ऐसा कहा, तो यशोदा को बड़ा आश्चर्य हुआ और यशोदा ने पूछा। तो ये पहले के चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी इसके बारे में बताते हैं। तो कहने लगे कि तुम्हारा कृष्ण जो है वो हमारे घर पे आके बड़ी शैतानियां करता है और माखन चुराता है। तो जब चोर कहने लगा तो यशोदा को लगा कि अरे ऐसा कैसे, चोर कैसे कह रही हो ना, तो मेरा बेटा शरारती हो सकता है लेकिन चोर नहीं हो सकता। तो यशोदा मान नहीं रही थी उनकी बात। तो पीछे से कृष्ण अंगूठा दिख रहा है गोपी को कि देख तेरी बात मानेगी नहीं, मेरी माँ है ये। तो कहने लगी और एक एक कंप्लेंट उनको बताने लगी। तो यशोदा को एक गोपी बोली कि देखो ये सुबह सुबह हमारे घर पे आता है और घर पे आके हमारे सारे गाय के बछड़ों को खोल देता है। तो क्या होता है, गाय के बछड़े भाग के और गाय का दूध पीते हैं, सारा दूध खत्म हो जाता है और हम ठहरी ग्वालन। तो हमारा जो पूरा का पूरा काम है वो दूध के ऊपर ही निर्भर रहता है, गोरस पे। और अगर हमारे को दूध नहीं मिलेगा तो हम कैसे जिएंगी, कैसे हमारा काम करेगी। और पूरा का पूरा सब बछड़े खोल के सारा दूध खत्म हो जाता है, हम अपने घर के काम में लगे रहती है। और तो जब यशोदा को ऐसा बोलते तो यशोदा बोलते कि अच्छा अगर ऐसा करता है तो तुमको उसको समझाना चाहिए, थोड़ा डांटना चाहिए, छोटा बच्चा है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बोलते मैया हमने इसको ऐसा, जब हम इसके ऐसा डांटती है तो ये उल्टा हमको डांटता है और हमको कहता है कि क्या मैं बछड़े अपने घर से लेके आ रहा हूँ, बछड़े किसके हैं, तुम्हारे, गाय किसकी है, तुम्हारी, तुम्हारे बछड़े तुम्हारी गाय का दूध पी रहे, उनका बल बढ़ रहा है कि मेरा बल बढ़ रहा है, आई कहीं की बात करने वाली, और इनको दूध नहीं पिला पिला के सुखा रही हो, ये क्या है, धट बरोबर कर रहा हूं मैं। तो बोले ऐसा कहता है हमको कृष्ण। और तो और मैया जब ये बछड़ों को छोड़ता है और हम बछड़ों को जाती है पकड़ने के लिए तो पीछे से घर में घुस जाता है, और घर में घुस के और हमारा जितना भी माखन है वो सब तहस नहस कर देता है, सारा का सारा मटकी फोड़ देता है, वो कर देता है। और चलो घर में घुस के थोड़ा बहुत माखन खा भी लेवे तो हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा बालक है कितना खाएगा, लेकिन अकेला नहीं आता है, पूरी टीम को लेके आता है, और पूरी टीम को लेके आता है और सारा माखन हमारा बर्बाद कर देता है, मटकी उतार देता है, मटकियों को फोड़ देता है। तो मैया अभी हम क्या करें बताओ। तो यशोदा कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर ये तुम्हारे घर आके ऐसा करता है तो तुम माखन को छुपा के रखो। तो गोपिया कहती है कि मैया हमने ऐसा करके देखा लेकिन इसकी नाक जो है ना बहुत तेज है, ये सूंघ लेता है कहाँ माखन है, और आपने इनके गले में ये जो मणि पहनाई है पद्मनाभ, वो मणि से इतना उजाला निकलता है और इसके शरीर से भी एक अजीब तरह का उजाला निकलता है कि ये अंधेरे में भी ढूंढ लेता है, और माखन को हम छुपा के रखती है लेकिन ये खोज लेता है। तो यशोदा कहती है कि ठीक है, तो माखन को थोड़ा ऊपर छींके पे बांध के रखो, इसका हाथ नहीं पहुंचेगा, छोटा है। तो बोलते कि मैया हमने वो भी करके देखा लेकिन ये जब आता है, जैसा हमने कहा अकेला नहीं आता, ये पूरी टीम लेके आता है और गोविंदा बना के एक के ऊपर एक चढ़ जाता है और छींके से भी माखन उतार लेता है और फिर वो माखन खा के पूरे घर में फैला देता है और सब ऐसा कर देता है। तो यशोदा कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है, अब अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो एक काम करो, तुम इसको माखन चुराने का मौका ही मत दो, ठीक है, ये जब तुम्हारे घर पे आता है तो तुम इसको माखन खिला दिया करो, और मैं तुमको गारंटी देती हूँ कि जितना माखन तुम खिलाओगी उससे 4 गुना ज्यादा माखन मैं आपको दूंगी। तो बोलते मैया ये कोई नई बात नहीं है, हमने ये भी करके सोचा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कम से कम नुकसान तो नहीं करेगा, थोड़ा माखन ही खाएगा, तो जब काना आता है और हम गगरी लेके खड़ी रहती है और इसको कहती है कि काना माखन खाएगा, तो पता है क्या कहता है, क्या भिखारी समझ के रखा है? हम क्या भिखारी है क्या? अरे हम राजा के पुत्र है, हम ऐसा मांग के नहीं खाते। और बोले के चोरी करने में कितना आनंद आता है मालूम है, कितना टेक्निक लगता है, कितना रिस्क उठाना पड़ता है, तब जाके चोरी होती है। आई बड़ी खिलाने वाली हमको माखन, धत नहीं चाहिए तुम्हारा माखन। तो बोले मैया ये ऐसे करता है तो अब हम लोग क्या करें? तो वो कहती है कि ये आके माखन भी खाता है और खाने के बाद इतना सब कुछ बर्बाद करता है हमारा, तो हम तो बहुत परेशान हो गई है इससे, तो मैया आप कुछ करो। तब तक दूसरी गोपी आके आके कहने लगी यशोदा से कि मैया एक दिन मैं पनघट पे पानी भरने जा रही थी और पता है इसने क्या किया, ये पीछे से आके इसने मेरी कलाई पकड़ ली, हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के मोड़ के मेरे को कहता है मुझसे शादी करोगी। तो बोलती है मैया इसको देखो देखो ये उम्र है इसकी शादी करने की, इतना छोटा सा है लेकिन ऐसी बातें कर रहा है, और इस प्रकार से हम लोगों को परेशान करते रहता ये। और हम लोग जब पनघट से पानी लेके गगरी लेके जब चलती है तो पीछे से पत्थर मारता है और हमारी गगरी फोड़ देता है और सारा का सारा पानी गिर जाता है, हम पूरी भीग जाती है, फिर वापस लेने के लिए जाती है, फिर वापस गगरी फोड़ देता है हमारा, और इस प्रकार से इतनी तूफान मचाता है कि हम कोई कार्य कर ही नहीं पाते हैं और पूरे के पूरे दिन बस हमको इसके पीछे पीछे ही पड़ना पड़ता है। तो इसके लिए अभी बहुत हो गया, हम यहाँ पर नहीं रह सकते या आप यहाँ पर नहीं रह सकते, आप डिसाइड कर लो। तो जब इतना कुछ यशोदा को कहने लगे तो यशोदा को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा कि भाई इतना कुछ मेरा बेटा करता है। और एक बार एक गोपी, जैसे कृष्ण जो है वो बात करने में बहुत निपुण और पटु है, तो एक बार एक गोपी ने सच में रंगे हाथों पकड़ लिया उसको, प्रभावती गोपी ने, और बोली आज तो तेरी माँ के पास तेरे को लेके जाऊंगी। और कई बार कृष्ण ऐसा कुछ करते थे कि यशोदा को विश्वास ही नहीं होता था कि मेरा बेटा ऐसा करता होगा, इतना अच्छी तरह से घुमा देता था यशोदा को कृष्ण कि यशोदा को कभी विश्वास नहीं हुआ कि मेरा बेटा सच में चोर है या चुराता है, माखन चुराता है। तो वो रंगे हाथों उसको पकड़ा और कृष्ण को घसीटती हुई यशोदा के पास लेके जाने लगी। तो कृष्ण रास्ते में उससे निवेदन करने लगा और कहने लगा देख तू अच्छा नहीं कर रही है, तू मुझे मैया के पास ऐसे मत लेके जा, अच्छा नहीं होगा, देख मैं तेरे को बता रहा हूँ। तो बोलती आज तो मैं बस तेरी माँ को बता ही दूंगी कि तू एक्जेक्टली क्या करता है, चल ऐसा खींच खींच के। और बार बार कृष्ण कहने लगा कि देख अच्छा नहीं होगा, ऐसा मत कर मेरे साथ में। तो गई और जाके वहीं पे कृष्ण को ऐसा उसके यशोदा के सामने कर दिया, बोला देख तेरा छोरा, तू बोल रही थी ना देख माखन चुराता है, आज रंगे हाथों इसको मैंने पकड़ा है, देख इसके मुंह में माखन लगा हुआ है, हाथ में माखन लगा हुआ है, देख ऐसा ऐसा करके कहने लगी। और यशोदा जोर जोर से हंसने लगी, तो हंसने लगी तो उसको समझाने की क्यों हंस रही है, और बोला कि अरे तू किसको पकड़ के लेके आ गई, जरा देख तो सही किसको लेके आई है। और जैसे ही प्रभावती गोपी ने देखा तो पता चला उसका खुद का बेटा था। तो कृष्ण ने उसके बेटे का रूप ले लिया और उसने सोचा अरे ये कैसे आ गया मेरे साथ में, मैं तो कृष्ण को पकड़ के लेके आई थी। तो उसको बोला अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, तो बोला तुम तो खींच के लेके आई मेरे को। और यशोदा कहने लगी कि देख तू बार बार कान्हा के बारे में सोच सोच के पगला गई है ना, और तू अपने बेटे को ही पकड़ के लेके आई है। तो गोपियों का क्या प्रॉब्लम था आपको मालूम है? हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम लोग कृष्ण के बारे में सोचते हैं और कृष्ण आते नहीं है हमारे दिल में। कितना सोचते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कितना कुछ करते हैं लेकिन कृष्ण आते नहीं है और गोपियों के साथ कृष्ण जाते नहीं है। तो गोपियां ये कहती है कि बाबा थोड़ी देर के लिए मेरे हृदय में से तू बाहर चला जा, तू निकल जा ताकि मैं अपने घर का काम कर सकूं। तो गोपियां उनको उल्टा कहती है कि तू निकल जा। और हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, भगवान की आरतियां उतारते हैं हजारों लाखों और कहते हैं कि आ जा भगवान आ जा, लेकिन भगवान कई बार आते नहीं है क्योंकि हमारा वो उस प्रकार का स्टैंडर्ड, उस प्रकार का प्रेम जब तक नहीं होगा। लेकिन गोपियों के साथ भगवान एकदम उनके हृदय के अंदर बैठे हुए हैं और गोपियां कहती है कि बाहर निकल जाओ, बस अभी अभी तो मैं कुछ काम कर सकूं। तो कहते हैं कि तू हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते रहती है इसलिए तेरी ऐसी हालत हो गई है, चल तू बैठ के थोड़ा ठंडा पानी पी फिर घर जा। तो वो जब घर जाने लगती है तो वापिस वो जो बेटा था वो कृष्ण बन जाते हैं और कृष्ण उसको कहता है देखा तेरे को बोला था ना मैंने बुरा होगा, तूने मेरी बात नहीं मानी। बोले अरे कृष्ण तू, तो बोला हाँ अब की बार तो मैं तेरा बेटा बनाऊ, नेक्स्ट टाइम अगर तूने मुझे पकड़ा तो तेरा पति बन के जाऊंगा। तो बिचारी तो इस प्रकार से यशोदा को कभी विश्वास ही नहीं होता था कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता, लेकिन आज जब इतने सारी गोपियां आई और सब कहने लगी तो कृष्ण घबरा गए, सोचे आज तो गए काम से, आज तो अभी मतलब बचने का कोई चांस नहीं है, एक एक करके तो मैं इसको कर लेता हूं। लेकिन कृष्ण भी जो है वो कम नहीं है किसी से, है कि नहीं? तो कृष्ण ने अपनी दुहाई देनी शुरू की, अपनी सफाई देनी शुरू की और देखो यहाँ पर कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं आपको एक नमूना बताता हूँ उसका। तो कृष्ण यशोदा को कहने लगे कि मैया तो इनकी बात मत सुन, ये सारी की सारी गोपियां जो है वो झूठी है, एक नंबर की झूठी है, और ये जो सब कह रही है सब कुछ गलत कह रही है, इसमें से कुछ भी सही नहीं है, मैं तेरी कसम खा के कहता हूं ये सही नहीं कह रही है। तो कान्हा इस प्रकार से यशोदा को ऐसा पटाते हैं और कहते हैं, कुछ ब्रजवासियों ने ऐसा भजन लिखा है, वो कहते हैं कि झूठी है सब ये लुगैया, सुन ले मेरी मैया। वो कहते हैं कि मैं क्या माखन चुराऊंगा, नवलख बंध रही गैया, सुन ले मेरी मैया। बोले मेरे तो 9 लाख गाय जो है वो मेरे घर पे बंधी हुई है, तो मैं क्या क्या चुराऊंगा, इसका माखन लूंगा मैं। तो इस प्रकार से कृष्ण कहने लगे और वो कहते हैं कि मैया ये जो कुछ भी कह रही है सब गलत कह रही है, और मैं तेरे को बताता हूँ हकीकत क्या है, असलियत क्या है। तो कहते हैं कि मैया जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना, और जब मैं जाता हूँ तो ये गोपियाँ खुद मुझे अपने घर में बुलाती है, ये अपने द्वार पे खड़े हो जाती है और मुझे इशारे करके अपने घर पे बुलाती है, और मैया मेरी बहुत बुरी हालत करती है और मुझसे बहुत घर का काम करवाती है। तो कहते हैं काना कहते हैं कि मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे ग्वालिन घर पे मोहे, ओ मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे ग्वालिन घर पे मोहे, ग्वालिन घर पे मोहे, ओ मैया ग्वालिन घर पे मोहे। तो बोले मैया मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ ना, यही मुझे अपने घर पे बुलाती है। आज इधर आके इतना शान पट्टी कर रही हो, तुझे बोल रही है, लेकिन यही सब आके और मेरे से क्या क्या करती है। तो उसके एक 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 चीज बताते जाते हैं कृष्ण। कहते हैं झपट उतारे कांचनी, कांचनी मतलब होता है दुपट्टा, ले झपट उतारे कांचनी और मुरली ले चुराए। तो बोले मेरी कांचनी खींच लेती है, मेरा दुपट्टा खींच लेती है, मेरी मुरली चुरा लेती है मैया। तो माँ कहती अच्छा, और तू कुछ बोलता नहीं। तो बोलते मैं क्या बोलू, झपट उतारे कांचनी मुरली ले चुराए, मैं छोटो ये धींगरी इनते बचो न जाए। बोले मैया मैं क्या करूं, मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ और ये मोटी साली धींगरी, हाँ मैं कैसे इसको पा सकता हूँ। तो ये मेरा दुपट्टा खींच लेती है, मेरी मुरली खींच लेती है, और फिर मुझसे अपने घर का पूरा काम करवाती है मैया, क्या बताऊं, सारा साफ सफाई करवाती है मुझसे, और खुद सो जाती है और कहती है मुझे मेरी चोटी बनाओ काना, और मेरे सामने एक दही की मटकी रख देती है और माखन रख के कहती है काना माखन खाएगा। तो बोलती है मैया तू बता मुझे माखन कितना पसंद है। वो मेरे सामने माखन रखती है और जब मैं माखन लेने के लिए कहता हूँ तो कहती है नाच के बता, तो मुझे नचाती है मैया, मैं आधे घंटे नाचता हूँ और फिर माखन मांगता हूँ तो माखन देती नहीं है, कहती और आधे घंटे नाचो। तो मैया नचा डालती है मुझे थोड़े माखन के लिए। तो इस प्रकार से वो कंप्लेंट करते हैं और कहते हैं कि भरी भरी मटकिया मोहे निकट गोरस की ददकाए, कि मेरे सामने गोरस की मटकी रख देती है, गोरस मतलब माखन, माखन की मटकी रखती है, और उसके बाद कहती है कि माखन दूंगी घनो सो चीटी बांधो लाल। तो बोले मेरे मेरी चीट मेरी चोटी बनवाने के लिए कहती है, और मैंने या की चीटी बीनी, बोले मैं रोज इसकी चोटियां बनाता हूँ माँ, बहुत हाथ दुखने लगते हैं मेरे, इतना मुझसे काम करवाती है, और फिर मुझे कहती है कि माखन ले, और माखन देती नहीं है, नचवाती है, आप ही नाचे मोहे नचावे का बताऊं तो है मैया, जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर पे मोहे। बोले माँ मुझे माखन भी नहीं देती है और घर का इतना काम भी करवाती है, अपनी चोटी भी बंधवाती है, और पता नहीं क्या क्या करवाती है मुझसे, और यहाँ पर आज आई है और कंप्लेंट कर रही है। तो कृष्ण बिल्कुल प्योर शुद्ध झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं। आप सोचो भगवान श्री कृष्ण कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिसको भागवतम, जिसको हम रोज बैठ के इतना आदर देके इसको पढ़ रहे हैं, ये भागवतम पहले श्लोक में डिक्लेयर करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतन्वया इतरतस्य चार्थे विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत सूरयः। और तेजो वारि मृणाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो जिस भगवान को भागवत सत्यम परम धीमहि कह के पुकारता है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अनादि अनंत है, जो जो भगवान से सब कुछ बाहर आता है, जन्मादि यस्य यत, जो सबके आदि पुरुष है, वो भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सरासर झूठ बोल रहे हैं और अपना जो ऑपुलेंस है सत्यवादी का वो सारा यहाँ पे यशोदा को इस तरह से बता रहे हैं और कहते हैं कि मैया इतना ही नहीं, देख सुन एक और तेरे को बात बताता हूँ। तो बोले कि एक बार मैं अपना पनघट पर बैठा हुआ था मैया, तो बोले मैया मुझे इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो चुपचाप अपना पनघट पर बैठ के और अपना उधर बांसुरी बजा रहा था, और यकीन नहीं आता है तो दाऊ जी से पूछ ले, भैया से पूछ ले, बलराम से पूछ ले, और बलराम को आंख मारा, बोला अभी तू चुप रहना तो उसको भी घसीट लिया बेचारे को। तो वो कहते हैं आगे कि एक दिन पनघट पर ओ मैया मैं बैठो एक वृक्ष की छैया। बोले कि मैया मैं पनघट पर एक वृक्ष की छाया में बैठा था, मैं तो चुपचाप बैठा था, मुझे तो इन लोगों से कुछ लेना देना है नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा था, वहां पे बांसुरी बजा रहा था, पर ये लोग वहां पर आई। तो एक दिन पनघट पर ओ मैया बैठो मैं एक वृक्ष की छैया, ये पहुंची लेकर गागरिया। बोले वहां पर एक गगरी लेकर आई और इन्होंने क्या किया, मुझे देखते ही मेरे पास आई और मेरा गाल पकड़ के जोर जोर से ऐसा 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 करने लगी, जैसे लेडीज करती है ना छोटे बच्चों को, तो बोले ऐसा जोर जोर से करने लगी, देख माँ अभी तक गाल लाल है मेरा, देख इतना इन्होंने मेरे को इधर से दिया। तो बोले गुलवा दे दे गाल लाल कियो, बोले इतना जोर जोर से मेरे को उसने ऐसा चिमटी काटा कि गुलवा दे दे गाल लाल कियो, का बताऊं तो है। बोले मैं ठाड़ो से रोयो, मैं बस रोने लगा मैया मैं क्या करूं, और अब यहाँ पर ये लोग आई है और आके मेरी कंप्लेंट कर दी है। मालूम है मैया क्यों कंप्लेंट कर रही है? ये सब मुझसे जलती है, ये सब मुझसे जलती है कि मैं इनका पुत्र नहीं बना ना, मैं तेरा पुत्र बन गया, इसके लिए सब जलती है मुझसे और आके सब गलत काम करती है और तेरे आके कान भरती है और तेरे को ये ऐसा करती है, और मैया और तो और ये मेरी शादी नहीं होना देना चाहती है। बोले कि मैं बहुत हैंडसम हूं ना, तो ये लोग मुझसे शादी करना चाहती है लेकिन मैं मना करता हूँ, तो आज मुझे बर्बाद करने के लिए और मेरी बदनामी करने के लिए तेरे पास आई है और तुझे कहती है। यशोदा को ऐसा घुमा दिया, क्योंकि यशोदा को जैसे एक बार और ये काना ने घुमाया था, तो थोड़ा सा ऐसे हो गया, तो जब माटी खाई थी तो बलराम दौड़ दौड़ के गया और यशोदा को आके कहते काना ने माटी खाई है, माटी खाई है, तो बिल्कुल सरासर कृष्ण बोलने लगे कि नहीं मैं तो माटी तो खाई नहीं है। और आचार्य तो खैर टिप्पणी देते बताते कि कृष्ण सच बोल रहे थे कि कृष्ण ने कोई माटी नहीं खाई है, क्योंकि ये सारा जो कुछ है वो कृष्ण का ही है, तो कृष्ण ना चोरी करते हैं ना ही सब कुछ जो है। जैसे एक बार प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न पूछा और कहा कि प्रभुपाद जी कृष्ण की 16108 रानियां थी, यू नो ऐसा कैसे? तो प्रभुपाद ने कहा अरे 16108 क्या, 16 करोड़ रानियां कृष्ण रख सकते हैं फिर भी वो सब उनकी है, तुम जो एक पत्नी रखे हो ना वो तुम्हारी चोरी है, वो भी तुम्हारी नहीं है, वो भी कृष्ण की है, लेकिन तुम उसको पकड़ के बैठे हो। तो बोले कि कृष्ण ना चोरी करते हैं, तो जो शास्त्र जो बोलता है वो सत्य है, सत्यम परम धीमहि, भगवान कभी झूठ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन भक्तों के हृदय को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि कृष्ण आज हम सुन रहे थे ना आकर्षति इति कृष्ण, कि कृष्ण कौन है जो सभी को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, और भगवान ये लीला करने के लिए, और ये जो दामोदर लीला है ये गोलोक वृंदावन का एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है। तो भगवान बताते हैं कि देखो मैं कैसी लीला कर रहा हूं, तो तुम उधर आ जाओ। न तद भाषेते सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परम मम, कि उस मेरा जो स्वयं प्रकाशित धाम है ना वहां पे सूर्य उसको प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा कर सकता है, और ना ही अग्नि की वहां पे जरूरत है, एक बार जो वहां पर पहुंच जाता है वापस नहीं आता, मेरे धाम में प्रवेश होता है और इस प्रकार से मेरे साथ लीला करता है। तो कृष्ण बता रहे कि देखो कितना आनंद आ रहा है, हम लोग ऐसी लीला कर रहे हैं, तुम भी वहां पर आ जाओ। और गोपियों का और कृष्ण का नोकझोंक इस प्रकार से होते रहता था, और कई बार गोपियां कृष्ण को चिढ़ाती थी। अब सोचो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, कभी आपने सोचा है कोई नारायण को चिढ़ाएगा? हो ही नहीं सकता। या वैसे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी है, कभी किसने सोचा नहीं रहा कि राम को हम चिढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ कृष्ण को चिढ़ा रही है गोपिया और उसको कहती है कि तू काला कलूटा, नंद गोरे यशोदा गोरी, तू काला कहां से हो गया, तू तो नंद का पुत्र है ही नहीं। तो इस प्रकार से और कितना उसको चिढ़ाती थी गोपियां सारी। और कहती थी कि तू इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, बोले तू काला क्यों है बता। तो यानी वजन तो बहुत अच्छा, उसमें कहते हैं कि तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों। तो बोलते कि तू काला कैसे, नंद गोरे यशोदा गोरी तू काला कैसे आ गया, तू इनका बेटा नहीं है, तेरे को तो भाड़े पे लाया, तेरे को तो गोद लिया इन लोगों ने। इस प्रकार से उसको चिढ़ाते थे कृष्ण को, और कृष्ण सच में रोते थे, और कई बार वो अलग हो जाते थे कि मेरे को इतने लोग चिढ़ा रहे हैं। तो एक बार कृष्ण गोपियों का जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि मैं काला क्यों, तो कहते हैं कि मैंने काली रात को जन्म लिया, कि रात के 12 बजे पैदा हुआ मैं काली रात को, और काली गाय का दूध पिया। तो बोले कि मेरी मैया जो है ना मुझे काली गाय का दूध पिलाती है, इसके लिए मैं काला हूँ। एक्चुअली वैसे मैं काला नहीं हूँ, लेकिन वो काली रात को पैदा हुआ इसलिए तुमको ऐसा दिखाई देता, थोड़ा ब्लैक शेड दिखाई दे रहा है, और मेरी जो कांचनी है ना कमरी जो है जो दुपट्टा है वो काला है, तो दुपट्टे का रिफ्लेक्शन मेरे मुंह पे आता है, तो इसके लिए थोड़ा काला दिखता हूं, मैं काला हूं नहीं। तो क्या मैंने काली रात को जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया, मेरे कमरी का रंग काला इसीलिए काला हूं। तो ऐसा बताते कृष्ण उसको, तो गोपिया कहती है कि ऐसा थोड़ी होता है, क्या कमरी रखने से कोई काला थोड़ी, तू सच में काला है। तो बोलते नहीं नहीं, नहीं मैं काला नहीं हूं, मैं काली दाह में कूद गया, मैं एक बार काली दाह के अंदर कूदा और काले नाग से युद्ध किया, और काले नाग से मैंने युद्ध किया, और उस युद्ध करने की वजह से और उसके फणों पे नाचने की वजह से उसके अंदर में था, तो तुमको काला दिखाई दे रहा हूं पर मैं काला हूं नहीं। तो इस प्रकार से कई वो अपना जजमेंट देते रहते हैं कि मैं काला नहीं हूं बाबा, और वो फिर कहते हैं कि मैं काला नहीं हूं, तेरे सिर पे जो गगरी है ना वो काली है, इसके लिए तेरे को काला दिख रहा है, और तेरा मन काला है इसके लिए मुझे काला दिख रहा है। लेकिन फिर लास्ट में कृष्ण एक ऐसा रीजन बताते हैं गोपियों को कि जो एकदम दिल को छूने वाला है। तो कहती है कि गोपी आंखों में काजल लगाती है, बोले कि तू अपने आंखों में काजल लगाती है और नैनों में मुझको बसाती है, और क्योंकि तू अपने नैनों में मुझे बसाते रहती है, दिन रात मुझे देखते रहती हो तुम लोग काला काजल लगा के। तो अभी आजकल तो क्या है कि ये इतने साल पहले की बात थी तो काजल काला ही होता था, आजकल तो लाल पीला पिंक पता नहीं किस किस तरह का काजल औरतें लगाती है। तो वृंदावन में एक गांव है जिसका नाम है आजनोक, कोई गए वहां पे कभी जाना, वहां पर एक पत्थर आज भी रखा हुआ है जिस पत्थर के ऊपर आप अगर उंगली घसोगे तो काजल लगा सकते हो पत्थर पे, हाँ इट्स ए स्टोन। बट वहां पर राधा और कृष्ण जब लीला कर रहे थे और लीला करते 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 कृष्ण ने वहां पे उंगली घसी पत्थर पे और राधा रानी को काजल लगाया, तो अंजन बोलते हैं उसको, अंजन आजनोक उस गांव का नाम है। तो आज भी डिवोटीज वहां पे जाते हैं वृंदावन में और फिर वो अपना काजल लगाते हैं वहां पे। तो कहे कि तू आंखों में काजल लगाती है और नैनों में मुझको बसाती है, तेरे कजरे का रंग कारा इसलिए काला हूं, तो इसलिए मैं काला हूं। तो गोपिया इतना कृष्ण के साथ इनका संबंध हुआ करता था और यहां पर आके इतनी कंप्लेंट कर रही है यशोदा मैया को, और ये कंप्लेंट की वजह से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि निर्ममंतम स्वयं दधि। तो हमने जो पहला श्लोक लिया उसमें क्या है कि एकदा गृह दासेशु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंतम स्वयं दधि, कि यशोदा स्वयं दधि मथने के लिए क्यों बैठ गई, क्योंकि इतनी गोपी आके कंप्लेंट करती थी कृष्ण घर पे खाता नहीं था माखन और चुरा चुरा के खाता था। तो यशोदा ने सोचा कि अच्छा नौकर चाकर अच्छा माखन नहीं बना रहे, मैं खुद अपने हाथ से माखन बनाती हूँ। तो इसके लिए यशोदा का क्या मतलब है, यशोदा मतलब वो जो भगवान श्री कृष्ण के लिए सब कुछ सर्वोत्तम करे। तो इसके लिए उसने क्या किया कि नंद बाबा के 9 लाख गायें थी, उन 9 लाख गायों से जो दूध निकला, ऐसा कहते हैं कि 9 लाख गायों का दूध 1 लाख गायों को पिलाते थे, फिर 10,000 1,000 100 गायों को, और वो उसमें से जो दूध निकलता था पद्मगंधा गायों का वो भगवान श्री कृष्ण के लिए यूज होता था सर्वोत्तम। तो भगवान के लिए कुछ अगर यूज करना है तो सर्वोत्तम यूज करना चाहिए, नहीं तो हम लोग हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा चीज यूज करते हैं लेकिन जब देने की बारी आती है तो बहुत डिफिकल्टी होती है और दे नहीं पाते। या जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े दानी लोग ऐसे कई बार हमने देखे हैं कि जो मार्केट में जाते हैं और गृहिणी वहां पे जाती है तो 10 का फटा हुआ नोट होता है, तो सोचती है बाजार मंडी में चल जाएगा, तो मंडी में चलाने की कोशिश करती है वहां नहीं चलता है, फिर वहां से सब्जी मंडी में जाती है वहां भी नहीं चलता है, सोचा दूध वाले को दे देती है वो भी नहीं लेता है, जब कहीं पे कहीं कुछ नहीं चलता है तो सोचते हैं चलो मंदिर में डाल देते हैं इस्कॉन टेम्पल में। ना वहां पे चले जाएंगे। तो कभी कभी जब हुंडी खुलती है तो इस प्रकार से चीजें भी बाहर आती है। लेकिन दानी हुए थे राजा हरिश्चंद्र महाराज श्री भी उस प्रकार से कि जो दान देते थे, लेकिन जब कोई व्यक्ति देने की कोशिश भी करता है तो अपना पर्स निकालता है और सबसे छोटा कॉइन ढूंढता है उसके अंदर, और डालता भी है तो ऐसा डालता है कि आवाज आनी चाहिए कि भगवान देखो मैं आ गया, है कि नहीं। और कई बार क्या है कि लोग आके जब मंदिर में जाते जोर से घंटी बजाते हैं और कहते हैं देख भगवान आ गया, मैं नोट कर, है कि नहीं। तो एक बार कोई आके प्रभुपाद को कहने लगा कि प्रभुपाद जी आपके मंदिर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन घंटी कहाँ है। तो क्या होता है कि आप कितना भी अच्छा काम करो इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं बुराई ढूंढने में एक्सपर्ट रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे मंदिर बनाए और आप जाके देख लो इस्कॉन के जो हमारे सारे मंदिर है एकदम पैक क्लीन, क्लीनलीनेस में नंबर वन। आप उसको 9002 ISO 9002 का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, इतना मतलब अच्छा था। लेकिन वो सब कुछ नहीं देख के एक व्यक्ति आके प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद जी आपका मंदिर तो बहुत अच्छा है लेकिन घंटी कहाँ है। तो प्रभुपाद ने कहा कि हम लोगों की घंटी जो है वो हमारे मुंह में है, ये हमारी जीवा, और जब बजती है तो केवल एक ही आवाज बाहर निकलती है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।
तो इस प्रकार से तो कोई दान देने के लिए जाता है तो इस प्रकार से मतलब गाड़ी चला चला के घस गई, अब धक्का मार के भी आगे नहीं बढ़ती है तो सोचते चलो इसको डोनेशन में दे देते हैं। लेकिन एक बार एक व्यक्ति एक ज्योतिष के पास गया और बोला कि शनि का प्रकोप है मेरे को कुछ करो। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, शनि का प्रकोप है निकाल देंगे, एक यज्ञ होता है 500 रुपया लगेगा, एक यज्ञ कराएंगे शनि का प्रकोप खत्म हो जाएगा। तो उसने कहा लेकिन 500 रुपये तो नहीं है मेरे पास। उसने कहा कोई बात नहीं, एक यज्ञ होता है 250 रुपये का भी, वो भी करेंगे तो शनि निकल जाएगा। तो बोलता लेकिन मेरे पास 250 रुपये भी नहीं है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, एक मिनी यज्ञ भी होता है 100 रुपये का, 100 रुपया दे दो एक मिनी यज्ञ करेंगे शनि निकल जाएगा। तो उसने कहा लेकिन प्रॉब्लम है मेरे पास 100 रुपये भी नहीं है। तो उसने कहा अच्छा 50 है, मतलब 50 भी नहीं है, मतलब 25 दे दे, 25 शनि को एडजस्ट करना है ना, अपने को आता है कैसे करने का एडजस्ट, कर देंगे 25 रुपये में दे दे। बोला 25 भी नहीं है, बोला 5 है, बोला नहीं 1 रुपया है। बोला 54 है क्या, 54 तेरे पास, तो बोला 54 भी नहीं है। तो उसने बोला यार जब तेरे पास 54 भी नहीं है तो शनि भी तेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो जब देने की इच्छा ही नहीं है तो बहुत बहुत डिफिकल्टी होती है देने के लिए। यानी मैं यहाँ पे क्यों आया था दान के लिए, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग, यहाँ क्यों आए थे दान के ऊपर?
स्वयं दधी,
नहीं नहीं वो तो स्वयं दधी तो
है, जो भी देना
है। हाँ यशोदा मतलब बेस्ट, वो पॉइंट मैं बता रहा था कि जो था वो कृष्ण के लिए एकदम उत्तम बना रही थी मिठाई के। तो जब वो यशोदा खुद स्वयं दधी वो दही मथने के लिए बैठ गई, और जब बैठ के दही मथ रही थी तो उसके हाथ में जो कंगन थे वो एक दूसरे से टकरा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे करताल बज रहा है, और वो जो मथानी थी वो मथानी से घर 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 आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था मृदंग बज रहा है, और वो गा रही थी। वो गाते गाते और कृष्ण का तो कहते हैं यानी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बालम चरितानी च, कि जो उसके बेटे की जो लीलाएं अब तक कृष्ण ने कर ली थी कि जो पूतना का वध किया था, जो तृणावर्त का शक्तासुर का वगैरह जो पहले वध कर लिया था, वो सब कृष्ण के बारे में वो सोच रही थी और उसके बारे में वो गा रही थी, और गाते 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 कृष्ण का वो माखन बना रही थी। तो हमको भी ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग अगर कोई भी काम करते हैं तो कृष्ण को हमेशा याद करते हुए करना चाहिए। तो इसके लिए हमारा सारा जो भी प्रोसेस है उसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। और कृष्ण क्या कहते हैं, सततम चिंतयन्तो माम, कि हमेशा मेरा चिंतन करते रहो। लेकिन हमारे को चिंतन नहीं होता है, हमारे को तो चिंता है कि नहीं, बहुत सारी चिंताएं हैं इस जीवन के अंदर। और किसी ने बहुत खूब कहा है कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है कि नहीं। चिता जो है वो एक बार जलाती है वो भी मरने के बाद, लेकिन चिंता क्षण क्षण जलाती है। तो अगर चिंता को छोड़ना है तो चिंतन करना चाहिए, सततम चिंतयन्तो माम। भगवान ने कहा है कि जब हम चिंतन करते रहेंगे भगवान का तब कोई कष्ट हमको सताएगा नहीं और कोई चीज इफेक्ट नहीं करेगी। तो वो गा रही थी और अपना मथानी से मत्ते मत्ते जैसे ब्रज में भी लोग भजन गाते हैं कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मैं चले मेरो मदन गोपाल। तो इस तरह से जब कर रहे थे तो वहां पर क्या हुआ कि जैसे ये मथानी से चल रहा था, कीर्तन वीर्तन सब चल रहा था, तो जहां पर कीर्तन होता है, भगवान की कथा होती है, भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। तो कृष्ण सोए हुए थे, वो उठ के दूसरे कमरे में से आए और आकर सीधा उन्होंने क्या किया, यशोदा के सामने आ गए और सामने आके सबसे पहले उन्होंने उस मंथानी को पकड़ लिया और कृष्ण ने यशोदा को कहा कि यस बस यशोदा, बस मैया अब इस मंथानी से ज्यादा मंथन मत कर, क्योंकि इस दुनिया के अंदर ऐसे सारे लोग हैं जो वेदों का बहुत मंथन करते रहते हैं और वेद पुराण का मंथन कर करके मुझे पकड़ने की कोशिश करते लेकिन मैं उनके हाथ में नहीं आता, तो ये मंथन करना बंद कर और केवल मुझे अपना दूध पिला, मुझे बहुत भूख लगी है। तो इसके लिए भगवान नारद मुनि को भी क्या कहते हैं कि नारद मुनि ने एक बार कृष्ण से पूछा कि जब घूमते रहता हूँ बहुत लोग तुम्हारा एड्रेस पूछते हैं, क्या बताऊं, क्या बोल दूं वैकुंठ में रहते हो, तो कहे नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता। तो अच्छा हृदयों योगी के हृदय में रहते हो, तो योगी नाम हृदय शुवा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, कि जहां पे मेरा भगवान का कीर्तन और कथा चलते रहता है नारद, मैं वहीं पे रहता हूं। तो भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं और उसको स्टॉप कराते हैं, यशोदा को कहते हैं कि तू मेरे को अपना दूध पिला बस। तो यशोदा अपने छोटे से शिशु को कान्हा को लेके अपनी गोदी में बिठाती है और अपना दूध पिलाना शुरू करती है। तो जैसे ही वो दूध पिलाना शुरू करती है, ये जो 9 लाख गायों से निकला हुआ पद्मगंधा दूध है जिसमें नेचुरली पद्म की गंध आती थी, उसकी सुगंध आती थी, अभी नहीं है जैसा हमारा फ्लेवर्ड मिल्क जो है जो मिलता है लूलू यार में अलरवा भी अलमराई का, तो ये जो दूध था ये चूल्हे पे था, गर्म करने के लिए रखा था और यशोदा ने सोचा था कि इस बेस्ट मिल्क से बेस्ट मिठाइयाँ बनाऊंगी कृष्ण के लिए आज में, दिवाली का दिन है। तो ये दूध सोचने लगा, अभी हमारा दूध तो सोचता नहीं है लेकिन आध्यात्म में सभी चीज चिन्मय होती है, तो वो दूध सोचने लगा और वो दूध क्या सोच रहा था, हमको एक शिक्षा दे रहा है वो दूध। वो दूध कहता है कि कृष्ण जो है वो माँ यशोदा का दूध पी रहे हैं और दूध पीने की वजह से उनका पेट भर जाएगा। अब उस दूध को इतना पता नहीं कि पूरा संसार कृष्ण के पेट में है, यू नो जब सृष्टि और विलय जब होता है तो सारा का सारा उसके पेट में सब चला जाता है और उसके पेट से ही सब कुछ आता है। तो वो उस उदर को जिसके अंदर पूरा का पूरा संसार बैठा है छोटे से रस्सी लेके यशोदा ने बांध दिया उसको, तो बोले कि इसका पेट भर जाएगा कृष्ण का, और जब इसका पेट भर जाएगा तो ये मुझे तो ग्रहण नहीं करेगा, मुझे तो नहीं खाएगा, मुझे नहीं पिएगा, तो मेरा जीवन जो है वो भगवान की सेवा में यूज नहीं होगा। तो अगर मेरा जीवन भगवान की सेवा में यूज नहीं हुआ तो ऐसे व्यर्थ जीवन का क्या लाभ, इससे अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो दूध ने आत्महत्या करने का प्रयास किया और दूध आत्महत्या कैसे करता है, उफन के, तो उफनने लगा। तो जब उफन रहा था तो उफनते उफनते वो आवाज कर रहा था, और ये आवाज यशोदा ने सुनी और यशोदा ने क्या सोचा, अरे ये इतना इंपॉर्टेंट मिल्क जो है, दूध जो है, ये ऐसे ही चला जाएगा तो इसको मैं बचाती हूँ। अब यशोदा अपने, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि शी वॉज ऑन हर क्रॉस रोड ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि एक डिसीजन ये है कि दूध को बचाऊं और दूसरा है कि अपने बच्चे को दूध पिला रही हूं, तो मैं क्या करूं, कृष्ण को दूध पिलाऊं या फिर मैं जाके उस दूध को बचाऊं, है ना। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है दैट वी आर ऑन अवर क्रॉस रोड ऑफ डिसीजन, कि दो दो डिसीजन लेना है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन ये बात अलग है कि हमारा डिसीजन कुछ अलग तरह का रहता है, हमारी चॉइसेस कुछ अलग तरह की रहती है, जिसमें हम लोग सोचते हैं कि थोड़ी देर में ज्यादा सोऊं या 2-4 चपाती ज्यादा खाऊं इसमें से क्या डिसीजन लेना है। तो कई बार इस प्रकार से चिंता होते रहती है कि भाई ये ज्यादा खाऊं या ये करूं करके, लेकिन यशोदा सोच रही थी। तो उस टाइम यशोदा ने क्या सोचा कि क्या करूं, दोनों इंपॉर्टेंट था, कृष्ण को दूध पिलाना इंपॉर्टेंट था क्योंकि कृष्ण ने क्या कहा कि इसको रोक, मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिला, और सारा का सारा जो कार्य था वो कृष्ण के लिए था। लेकिन यशोदा ने सोचा कि ये दूध चला जाएगा तो अब इस केस में यशोदा को क्या करना चाहिए, यशोदा को दूध बचाना चाहिए या कृष्ण को दूध पिलाना चाहिए उस टाइम पे। तो यशोदा ने सोचा, भगवान इंटेलिजेंस देते, ददामी बुद्धि योगम तम, तो भगवान कहते हैं। तो यशोदा ने क्या सोचा कि मेरा दूध तो मेरे शरीर में है, मेरे पास ही है, वो तो रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये दूध चला गया तो फिर वापस कहां से आएगा, तो कल ही मिलेगा हमको वापस जब गाय दूध देगी तब। ऐसा तो नहीं था कि वहां पे वो रेफ्रिजरेटर में रखा होता था, कोई रेफ्रिजरेटर तो होता नहीं था वहां पे। तो उसने सोचा कि मेरा दूध तो मैं कृष्ण को कभी भी पिला दूंगी, इस दूध को मैं बचाने जाती हूँ। तो उसने धीरे से कृष्ण को नीचे रखा और उस दूध को बचाने के लिए दौड़ी, और जैसे ही दूध ने देखा कि मैया आ रही है, वापस अंदर चला गया और वो बच गया। लेकिन इतने में कृष्ण को गुस्सा आ गया, तो वो भगवान, जैसे मैंने कहा भगवान का ऑपुलेंस, एक भगवान का ये भी ऑपुलेंस है कि वो कभी गुस्सा नहीं होते, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी थे एकदम धीर, राज्य मिलना है कल, ये घोषणा हो गई कि कल आपको राजा बनाया जाएगा, तो भी सेम, कोई भगवान के अंदर कोई डिफरेंस नहीं। और फिर पता चला थोड़ी देर के बाद कि अभी राजा नहीं बनेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, वनवासी बनना पड़ेगा, तो भी भगवान रामचंद्र जी एक जैसे ही, कोई डिफरेंस नहीं उनमें, एकदम गंभीर धीर। तो भगवान का एक है कि उनको कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भगवान क्रोध कर रहे। कृष्ण को बहुत गुस्सा आया और एकदम तम तमाते हुए उसने कहा कि अरे पूरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं हूं कृष्ण है, समसिद्धि हरितोषणम, कि भगवान को प्रसन्न करना ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम इस जीवन में जो कुछ भी करते हैं, इतनी भयंकर तपस्या करते हैं, ये सब कोई चीज का कोई कारण नहीं है। जैसे वो कहते हैं कि आराधय तो यदि हरि तपसा तथा किम, न आराधय तो यदि हरि तपसा तथा किम, अंतर बाहर यदि हरि तपसा तथा किम, न अंतर बाहर यदि हरि तपसा तथा किम। कि अगर भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हो तो तपस्या करने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? और अगर भगवान की आराधना नहीं कर रहे हो तो तपस्या कर क्यों रहे हो, क्या फायदा इसी तपस्या करने का? अगर भगवान अंदर बाहर नहीं है तो तपस्या क्यों का करने का क्या फायदा? और अगर भगवान अंदर बाहर है तो तपस्या क्यों कर रहे हो, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पर्पज वही है। तो कृष्ण ने कहा कि पूरा जीवन का जो पर्पज है वो है मैं गोल हूं, मैं लक्ष्य हूं। भगवान कहते हैं भगवद गीता के अंदर, गतिर भरता प्रभु साक्षी, कि मैं ही लोगों का गति हूं, मैं ही गोल हूं, मैं ही साक्षी हूं और मैं ही सबका फ्रेंड हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति, भगवान कहते हैं कि मैं जो है वो सबका सुहृद हूं। मुझको छोड़ के और तू ऐसा एक छोटा सा मटेरियल चीज बचाने के लिए भागी, एक भौतिक वस्तु को बचाने के लिए कृष्ण को छोड़ के वस्तु के पीछे भाग रहे हो। तो यहाँ पर ये भी भगवान बताना चाहते हैं कि जब चॉइस आती है हमारे बीच में कृष्ण या वस्तु के बीच में, तो कृष्ण को सिलेक्ट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं था कि यशोदा यहाँ पर रॉन्ग थी, पर एक शिक्षा यहाँ से मिलती है कि भगवान कृष्ण को न पाकर और अगर वस्तुओं के पीछे भागे तो उसका क्या फायदा है, कि नहीं? तो एक बार एक व्यक्ति था, एक साधु बैठा हुआ था, उसके पास जाके और प्रणाम करने लगा और बहुत सारी प्रणामी उनके चरणों में रख दी और कहा कि हे साधु महात्मा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप तो कितने बड़े त्यागी हो। तो उसने कहा कि अरे मैं त्यागी व्यागी नहीं हूं, तुम महात्यागी हो। तो उसने कहा कि अरे मैं कहां महात्यागी हूं, मैं तो मेरा तो खुद का धंधा है, बिजनेस है, ऐसा सब करते रहता हूं, मैं किधर त्यागी हुआ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं आप त्यागी हो। तो उसने कहा नहीं साधु महात्मा आप त्यागी हो, मैं नहीं हूं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं आप महात्यागी हो। तो बोले अरे मैं तो अपने बीबी बच्चों के साथ में रहता हूँ, कितना कुछ करता हूँ, मेरा तो पूरा सब कुछ, इतना सारा झमेला मैंने पाल के रखा है, मैं कहां से त्यागी हुआ, त्यागी तो आप हो महात्मा जी। तो महात्मा ने कहा अरे मैं कोई त्यागी व्यागी नहीं हूं, तुम त्यागी हो। तो उसको गुस्सा आने लगा, बोला अरे महात्मा जी मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आप मेरे को उल्टा ही बोल रहे हो करके। तो महात्मा ने कहा कि देखो मैंने तो क्या त्याग किया है, कुछ थोड़ा बड़ा एक घर छोटा है, परिवार छोड़ा है, कुछ खाने पीने की वस्तु छोड़ी है, थोड़ा मैं उपवास करता हूं या कुछ है ऐसा करके, मैंने तो एकदम बहुत छोटी मोटी चीजों का त्याग किया है, लेकिन आपने तो कृष्ण का ही त्याग कर दिया। तो आप महात्यागी हुए कि नहीं, यानी आपने कृष्ण का ही त्याग कर दिया, तो इससे बड़ा और क्या है कि अगर वही चीज जिसको अपनानी चाहिए उसको ही हमने छोड़ दी, तो पूरी दुनिया को लेके भी क्या हासिल कर लोगे। तो कृष्ण ने कहा कि अरे तूने मुझे कैसे पटक दिया, अभी मैं बताऊंगा। तो कृष्ण ने क्या कि एक पत्थर लिया, उधर पड़ा था और देखा कि ये सुबह से लगी हुई है, इस मटके को घस रही है इसके पीछे पीछे, तो इसी को तोड़ देता हूं मैं। तो उसने पत्थर लिया और मटके को ऐसा ऊपर किया और नीचे मारा पत्थर थाड़ करके। और नीचे क्यों मारा, क्योंकि अगर समझे जैसे मटके को अगर यहां से मार के तोड़ता तो इतना ही माखन जाता था, नीचे बच जाता था। उसने इधर पत्थर मारा कृष्ण ने, सोचो कृष्ण का इंटेलिजेंस कितना है। तो इधर पत्थर मारने की वजह से एक बूंद उसके अंदर बचा नहीं, सारा का सारा खाली हो गया और सारा मटका तोड़ ताड़ के और दूसरे सब मटके लेके और सारा तहस नहस मचा दिया वहां पे कृष्ण ने। इतना गुस्सा आया उसको और पूरा अपना होठ को दबा के एकदम आग बबूला हो रहे थे कृष्ण, इतना गुस्सा। और यही कृष्ण भगवद गीता के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशणो महापापमा। तो बोले कि ये जो काम और क्रोध जो है, देर आर थ्री रॉयल गेट्स टू हेल, कि जो आपको सीधा नरक में लेके जाएंगे, काम क्रोध और लोभ, भगवान कहते हैं। और वही जो उपदेश दे रहे अर्जुन को खड़े खड़े, वो यहाँ पर क्या कर रहे, इतना सारा क्रोध कर रहे हैं और पूरा मटका वटका सब तोड़ दिया और वो मटके को एक को उठा के और बाहर लेके गए और अपने दोस्तों को खिलाने के लिए। और भगवान कृष्ण के दोस्त कौन है, बंदर है, और बंदरों को खिलाने के लिए लेके गए। और कृष्ण यदा कदा बंदरों को बहुत माखन खिला देते थे। तो उसके पीछे रीजन ये है कि जब भगवान रामचंद्र जी के रूप में आए थे तो इन बंदरों की सेवा से द्रवित हो गए थे। इन बंदरों ने इतनी सारी सेवा की भगवान रामचंद्र जी की और इतना बड़ा त्याग किया उन बंदरों ने भगवान के लिए। तो किसी का फाइट करते टाइम हाथ कट जाता था, पूंछ कट जाती थी, क्योंकि राक्षसों के पास तलवार थी, इनके पास तो कुछ था नहीं, ये तो पेड़ और पत्थर फेंक फेंक के लड़ाई करते थे। तो इतना कुछ उन्होंने जब त्याग किया तो भगवान रामचंद्र जी का भी हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने उनसे कहा कि देखो, इस लीला के अंदर मैं एक वनवासी के रूप में घूम रहा हूँ, मेरे पास धन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, धन का अभाव है, मैं तुमको कुछ खिला पिला नहीं सकता, तो कंदमूल खाकर तुम खुश रहो, लेकिन खिलाने पिलाने में जो कमी मैं छोड़ रहा हूँ वो अगली लीला में पूरी कर दूंगा। तो इस प्रकार से कृष्ण यदा कदा बंदरों को ऐसा माखन खिलाते थे और बहुत माखन खिलाते थे कि भाई मैंने लास्ट लीला में कुछ नहीं, बहुत काम करवाया तुमसे, अभी लो माखन खाओ। और कभी कभी इतना माखन खिलाते थे बंदरों को कि बंदर भी ऊब जाते थे। ऐसा होता ना कि जैसे हम लोग का भी कोई फेवरेट आइटम है, अगर खाते हैं बहुत ज्यादा खाओगे तो ऊब जाओगे। तो गोपियां जब कंप्लेंट करती थी तो कृष्ण गोपियों को कहते कि अरे क्या बात करती हो, इतना थर्ड क्लास माखन बनाते हो कि बंदर भी थूक देते। तो ऐसा गोपियों को तो इतना माखन वो खिलाते थे। तो सुखदेव गोस्वामी भी इस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं और कहते हैं कि देखो भगवान रामचंद्र जी कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है भगवान रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम, इतनी उनकी शक्ति, अपार शक्ति कि भगवान अगर अपनी भ्रुकुटी अगर हिलाए तो अच्छे अच्छे देवता अपनी धोती में कांपने लग जाए। और वो देवता जो भगवान के इशारों पे चलते हैं और भगवान के अंदर में और अपने सिर पे रखा हुआ जौजल्यमान बड़ा बड़ा मुकुट निकाल निकाल के और भगवान रामचंद्र जी के पैरों में लाके रखते हैं, वो भगवान क्या कर रहे हैं, देखो बंदरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो एकदम वो उनके मुंह से निकल जाता है और कहते किम चित्रम अच्युत तथे वशेष बंधो दाशेषु अनन्य शरणेषु यदात्म सत्वम यो रोचयत सहमृगे स्वयं ईश्वराणाम श्रीमत किरीट तट पीड़ित पाद पीठ। बोले स्वयं ईश्वराणाम, वो कौन है, स्वयं ईश्वर है, लेकिन ये जो वानर लोग है इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, बंदरों से अपना कंसल्टेंसी ले रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं, हनुमान को पूछ रहे हैं कि सीता को कैसे ढूंढे, किस डायरेक्शन में ढूंढे, सुग्रीव से पूछ रहे हैं, जामवंत से पूछ रहे हैं, अंगद से पूछ रहे हैं, नल नील से पूछ रहे हैं, अरे विभीषण से पूछ रहे हैं जो उनके शत्रु का भाई है, और उसको पूछ रहे हैं कि देखो कैसे कैसे हम लोग रावण को मार सकते, थोड़ा सा आइडिया दो हमारे को। वो भगवान जो वर्तमानी च भूतानी च भविष्यानी च सब कुछ जानते हैं, उनसे कोई चीज छुपी नहीं है, भगवान हर चीज जानते हैं, सबके हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। वो भगवान अपने दासों को इतना वैल्यू दे रहे हैं। तो एक बड़ा व्यक्ति का महानता तभी देखी जा सकती है जो अपने छोटे व्यक्ति से वो कैसे बात करता है, उनके साथ उसका क्या डीलिंग होता है, क्या व्यवहार होता है, उससे उसको पता लगता है। और जीवन के अंदर जब आपातकालीन सिचुएशन आती है ना, जब विपदाएं आती है, तभी आदमी इज टेस्टेड प्रॉपरली। अदरवाइज जब तक अच्छा चल रहा तब तक सब हरी बोल हरी बोल हरी बोल। इसलिए प्रभुपाद ने क्या लिखा, दैट वंस ग्रेटनेस हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। वंस ग्रेटनेस हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। कि जब जीवन में विषम परिस्थितियां आती है, आपातकालीन परिस्थितियां आती है, उसमें हम कैसा व्यवहार करते हैं। भगवान रामचंद्र जी यहाँ पर इनसे कंसल्टेंसी ले रहे हैं। और कई बार मैं एग्जांपल दे चुका हूँ कि जैसे समझो एमिरेट्स पैलेस में बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा है और डेलीगेट आए सूट वूट सब पहन के, और उसमें एक शेख जा रहा है मीटिंग अटेंड करने के लिए, और साथ में हाथ में बंदर का हाथ पकड़ के जा रहे हैं, बंदर साथ साथ में जा रहा है। सोचो ये सीन को आप विजुअलाइज करो, और कोई पूछेगा ये बंदर कौन है, इसको क्यों लेके आया मीटिंग के अंदर, तो बोलेगा ये मेरा एसोसिएट है, मेरा कंसल्टेंट है, कंसल्टेंसी देगा मेरे को। तो वहीं पे वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके चले जाएंगे, बोलेंगे भैया कैसा पागल आदमी है, इसके साथ हम लोग धंधा करने बैठे, हमारा धंधा चौपट करेगा, चलो करके। तो कोई भी समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसके पास अपार धन है, जिसके पास अपार उसका सोसाइटी में स्थान है, वो व्यक्ति कभी ऐसा व्यवहार नहीं करता, लेकिन भगवान रामचंद्र जी कर रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स्वयं ईश्वराणाम यो रोचयत सह मृगय, मृगय मतलब क्या होता है, जानवर, मृग, मृग के साथ में सह ईश्वराणाम श्रीमत किरीट तट पीड़ित पाद पीठ, के जिसके पैरों में आके लोग इतना मुकुट चढ़ाते, ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा जी शिव जी सभी लोग जिसकी आराधना करते हैं, क्योंकि शिव जी किसकी आराधना करते हैं, राम की। एक बार पार्वती ने पूछा कि स्वामी मैं देखती हूँ आखा दिन तुम बैठ के कैलाश के अंदर आंख बंद करके हाथ में माला लेके क्या करते रहते हो, तो शिव जी ने क्या जवाब दिया, राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्र तुल्यम राम नाम वरान रे। और वो कहने लगे, और एक बार पार्वती ने पूछा शिव जी को कि अरे बहुत सारे लोग क्या अलग 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 बात कहते हैं, समझ में नहीं आती, आप जजमेंट दो, आप बताओ इस दुनिया के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, क्या सब कुछ जो है जो परम सत्य, परम सत्य कौन है, सत्य क्या है मेरे को बताओ, और आप बोल दोगे पूरी दुनिया उसको मानेगी, क्योंकि आप अथॉरिटी हो, आप महादेव हो, आप बोलो। तब शिव जी ने कहा, उमा कहत अनुभव मैं अपना। वो कहते कि उमा सुन, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं तेरे को। और शिवजी का अनुभव हमारे ऐसा अनुभव नहीं है, शिवजी ने बहुत कुछ देखा है, महादेव है वो। तो कहते कि उमा कहत मैं अनुभव अपना, हरि भज सत हरि भजन जगत सब सपना। कि एक सत्य है इसमें, वो है हरि भजन, कि भगवान का भजन करो, केवल वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो इस प्रकार से भगवान जो है रामचंद्र जी, उतना वो बंदरों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और ये जब कृष्ण बंदरों के साथ ऐसा व्यवहार करते, ऊपर से ब्रह्मा जी देखते हैं और देख के आश्चर्यचकित हो जाते, बोलते कि अरे बाप रे, वो परब्रह्म, यू नो, जैसे एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं जिनका नाम है रघुपति उपाध्याय, वो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वो कहते हैं मेरे को श्लोक याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें कहते हैं कि अहम इह नंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म, कि मैं उस नंद बाबा के आंगन की पूजा करता हूं जिसके आंगन में परब्रह्म, परम ब्रह्म, परम सत्य जो है वो खेल रहा है। नो, हम वो भागवत में वही श्लोक लेने वाले थे कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सब्जते, कि जो वो परम सत्य है, परम सत्य की व्याख्या क्या है, वो परम सत्य क्या कर रहा है, वो परम सत्य नंद बाबा के आंगन में खेल रहा है। और इसके लिए श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भारत मन्य भवंती भय भीतुम यस्यालिंदे पर ब्रह्म यस्यालिंदे पर ब्रह्म। कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर लोग बहुत डर के मारे ये सब चीज पढ़ते हैं, लेकिन मुझे किसी चीज की कोई डर नहीं है, मैं केवल नंद बाबा के आंगन का आराधना करता हूं। तो वैसा जब व्यवहार कर रहे थे कृष्ण बंदरों के साथ, बंदरों को माखन खिला रहे थे, तो ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं और ब्रह्मा जी के उद्गार निकलते हैं भागवत के अंदर। वो कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोले कि ये क्या है, अहो भाग्यम, कह रहे कितना बड़ा भाग्य है इन बंदरों का कितना बड़ा भाग्य है कि पूर्ण पुरुषोत्तम परम सत्य भगवान के लिए, द वन विदाउट सेकंड, कि जिसके ऊपर कोई नहीं है, आदि नहीं है, ऊर्ध्व कोई नहीं है, भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान के ऊपर कोई नहीं है, उस पर ब्रह्म के साथ ये बंदरों के साथ वो लोग मित्रता करके रखे हैं। और भगवान रामचंद्र जी को सोचो, जब विभीषण आए थे सभी लोग मना कर रहे थे विभीषण को लेने के लिए, लेकिन हनुमान जी से भगवान ने पूछा और भगवान ने कहा कि कोई भी व्यक्ति आके अगर मेरी शरण में आता है तो और अभयदान उसको दे दूंगा, अगर आके कहता आई एम योर्स, मैं आपका हूं, बस बहुत हो गया। और जब विभीषण आया तो आते ही भगवान ने उसको कैसे एड्रेस किया, कहा लंकेश यू आर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है लंकेश। तो किसी ने कहा अरे लंका पे तो विजय प्राप्त नहीं की हमने अभी तक, इसको लंकेश कैसे बना दिया। और किसी ने मजाक किया, हनुमान ने पूछा भगवान से कि अगर अच्छा आप ऐसा बोल रहे हो कि कोई भी मेरी शरण में आएगा, अगर अभी रावण आपकी शरण में आ गया तो आप क्या करोगे, लंकापति इसको बनाओगे कि उसको बनाओगे। तो बोला कि उसको तो लंकेश कह दिया तो लंका तो मैं विभीषण को दूंगा, लेकिन अगर रावण आके सरेंडर करेगा तो अयोध्या दे दूंगा उसको उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा मैं। तो ये भगवान रामचंद्र जी की महानता है, ये कृपा, ऐसे हमारे भगवान है। तो बंदर को जाके वो माखन खिलाने लगे और बंदर माखन खा रहे थे और यशोदा बाहर निकली और बाहर निकल के देखा कि सारा का सारा तहस नहस करके रखा है, तोड़ फोड़ रखा है। तो यशोदा को बड़ा गुस्सा आया, बोला आज तो उसको कुछ तो लेसन सिखाना ही पड़ेगा। तो उसने छड़ी उठा ली वहां पे और भगवान के छोटे छोटे जो पैर है वो माखन के ऊपर लगे हुए थे और जिस डायरेक्शन में वो जा रहे थे यशोदा उसको फॉलो करते 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 गई तो देखा कि कृष्ण एक उखल पे बैठ के और बंदरों को माखन खिला रहे हैं, फेंक रहे बंदरों के सामने और बंदर भी मजा कर रहे हैं। और कृष्ण का जो मुंह उस तरफ था, यशोदा पीछे से आ रही थी धीरे 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 कि कृष्ण को पता नहीं चले और पकड़ ले कृष्ण को, नहीं तो कृष्ण चंचल थे भाग जाते थे। तो पकड़ने गए तो वैसे ही बंदरों ने देखा और बंदरों ने इशारा किया, ओ वही आ गई, कृष्ण कूदे और भागने लगे, वो भागने लगे और मैया यशोदा कृष्ण के पीछे 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 भागी, लेकिन कृष्ण को पकड़ नहीं पाई। तो जब कृष्ण भाग रहे थे तो आचार्य ये बात बताते हैं कि कृष्ण को कौन पकड़ सकता है, कोई है इस दुनिया के अंदर जो कृष्ण को पकड़ ले, कोई नहीं पकड़ सकता। भगवान जो है ही इज द फास्टेस्ट ऑफ फास्टर देन द फास्टेस्ट एंड स्विफ्टर देन द स्विफ्टेस्ट, कोई इसको पकड़ नहीं सकता। भगवान को ऐसे बताते हैं कि हजारों करोड़ों वर्षों तक मुनि लोग तपस्या करते हैं और भगवान के अंगूठे के नाखून के टिप तक पहुंच नहीं पाते, उसको भगवान को कौन पकड़ पाएगा। लेकिन भगवान का एक नाम रणछोड़ है, तो भगवान रण छोड़ के भागे थे, लेकिन अगर कोई दूसरा भागता है तो कायर कहा जाता है, लेकिन इसको रणछोड़ राय की जय रोज वो करते हैं। तो भगवान जो है वो अपनी असीम लीला करते हैं, तो वो पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। और जब वो यशोदा भाग रही थी, उसका भारी भरकम शरीर था और कृष्ण तो छोटे से फटाफट फटाफट भाग रहे थे, तो यशोदा के सिर पे जूड़ों में फूल लगे हुए थे। तो वो फूल सोच रहे थे कि अरे बाप रे बाप, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ये यशोदा के डर से भाग रहा है। अब देखो, हमने एक भगवान का डेफिनेशन दिया था कि जो किसी से डरता नहीं है, पर यहाँ पर यशोदा से डर के भाग रहा है वो। तो वो भागने लगे तो वो सोचने लगे कि अरे बाप रे, कृष्ण यशोदा से डर के भाग रहा है, यशोदा इतनी बड़ी भक्त है और हम लोग यशोदा के सिर पे बैठे हैं, हमको किधर होना चाहिए? पैरों में, हमको पैरों में होना चाहिए। तो गिरो, तो एक 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 फूल, तो यशोदा का भागने की वजह से गिर रहे थे। लेकिन आचार्य ऐसी टिप्पणी करके बताते कि देखो, वो फूल इस तरह से सोच रहे थे, उनका कॉन्शियसनेस ऐसा था कि यशोदा, फिर दो फूल आपस में बात करते, बोले देखो अभी यशोदा भाग के अल्टीमेटली कृष्ण को पकड़ेगी और कृष्ण को पकड़ के सजा देगी, तो इस षड्यंत्र के हम लोग भागी नहीं बनना चाहते, इसके लिए गिरो अभी। तो ऐसा एक 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 फूल गिरने लगे और कृष्ण भाग रहे थे। आखिर यशोदा पकड़ नहीं पाए, तो यशोदा ने कृष्ण से प्रार्थना की कि हे कृष्ण पकड़ा जा। और कृष्ण ने सोचा कि मैया ने बहुत अभी मेहनत कर ली, चलो मैं पकड़ा जाता हूँ। तो उसने पकड़ लिया। तो इसके लिए जैसे ही उसने पकड़ लिया, सत्यव्रत मुनि ने अपनी कलम चला ली और क्या लिखा कि परामृष्टम अत्यंत तो धृत्य गोपिया। उन्होंने ये बात लिख दी वहां पर इमीडिएटली कि उस गोपी ने ज्यादा रफ्तार से दौड़ के फास्ट भाग के कृष्ण को पकड़ लिया, है कि नहीं? तो हमारा जो इस फर्स्ट श्लोक का लास्ट लाइन में क्या कहते हैं, परामृष्टम अत्यंत तो धृत्य गोपिया, कि वो गोपी धृत्य मतलब जोर से भाग के और कृष्ण को पकड़ लिया। तो यहां पर हमको एक और शिक्षा मिलती है। कृष्ण बताना चाहते हैं कि इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हम लोगों को इस प्रकार से शिक्षा दी जाती है कि हमको जीवन में क्या करना है, नंबर वन बनना है, और नंबर वन बनने के लिए सभी को पछाड़ के और हमको आगे आना है, सबको पीछे डाल के और हम सबसे आगे आवे। इसके लिए एग्जाम में नंबर वन, दूसरे कार्यों में नंबर वन, स्पोर्ट्स में नंबर वन, सबको हराओ और आगे आओ। तो ये हमारे को ठूस ठूस के हमारे मॉडर्न एजुकेशन ने हमको ये दिमाग के अंदर डाल दिया है कि जीवन में कुछ करना है तो नंबर वन करना है और सबको पीछे पकड़ के आना है। और कभी कभी व्यक्ति भागता है तो पीछे देखते रहता है और उसको लगता है कि अगर पीछे कोई दिखाई देता है तो भी डर लगता है कि कहीं आगे नहीं निकल जाए। लेकिन कृष्ण यहाँ पर एक शिक्षा दे रहे हैं कि हमको ये सारी चीजें भक्ति में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर भक्ति में हम ऐसा कॉन्शियसनेस रखेंगे नंबर वन आने का, तो ये भक्ति के प्रिंसिपल के ठीक विपरीत होगा। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति में सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है, हार। भक्ति इज साइंस ऑफ बीइंग डिफीटेड। भगवान उसमें आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन अगर हमको कोई हरा देवे तो हमको कैसा लगता है कि नहीं, अरे इसने मुझे हराया कैसे, मैं इसको हराऊंगा, मैं इसको पछाड़ के दिखाऊंगा, समझता क्या अपने आप को इस प्रकार से। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति के अंदर अगर हम लोग आए हैं तो इस प्रकार से हमारा कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है, उस आगे बढ़ते हुए व्यक्ति को देख के हमारे जीवन में खुशी मिलती है हमारे को, तो समझना चाहिए कि हमको भगवान दामोदर की कृपा प्राप्त होगी। नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं तो क्या है कि हम खींचते रहते हैं दूसरों को, अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा उसने इतना कुछ कर लिया, मैं उसको करके दिखाऊंगा। देयर शुड बी अ कॉम्पिटिशन स्पिरिचुअली, बट नॉट फॉर यू नो डिफीटिंग एनीबडी, बट फॉर इंस्पायरिंग। तो इसके लिए जब गोपों की जब रेस लगती थी तो सब लोग भाग के कृष्ण को पकड़ना चाहते थे और सब एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके आगे बढ़ने का पर्पज ये नहीं था कि मैं पीछे हरा दूं दूसरे को, वो कृष्ण को पकड़ना चाहते हैं। तो दैट कॉम्पिटिशन इज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन एंड शुड बी एनकरेज्ड। बट अगर कोई ऐसा व्यक्ति सोचे कि नहीं, मैं नहीं हारना चाहता और मैं जीवन में पहला आना चाहता हूं, तो यह भक्ति के सिद्धांतों के विपरीत होगा। तो परामृष्टम अत्यंत तो धृत्य गोपिया, तो यहां पर स्पेसिफिकली इन्होंने कहा, खाली इतना भी कह सकते थे कि वो गोपी ने पकड़ लिया, यशोदा ने पकड़ लिया, पर कहा कि नहीं, गोपी यशोदा फास्ट भागी कृष्ण से और फास्ट भागे और कृष्ण को पकड़ लिया। तो जैसे ही कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण एकदम डर गए और डर के रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मं बृजंतम करम भोज युग में ना शांतक नेत्रम, तो बोले अपने हाथों से और अपनी आंखों को मलने लगे, वो सिस्कारियां भर रहे थे इतना जोर जोर से, उसको डर लग रहा था छड़ी को देख के कि रुदंतम, रोने लगे, भगवान कोई रोता है क्या ये कैसा भगवान है। तो इसके लिए जब सत्यव्रत मुनि ने ये जब अष्टकम लिखा, दामोदर अष्टकम, तो इस अष्टकम में लिखने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड सबसे पहले यूज किया, और वो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? नमामि ईश्वरम। तो उसने कहा कि देखो ये जो लीला है, इस लीला में कृष्ण नन्हे से शिशु के रूप में डरते हुए, भागते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन आपको पहले बताता हूं ये कौन है, ईश्वर है। ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। ये तो ईश्वर का नाम लेते बहुत लोग के हाथ खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे मैं भी ईश्वर हूं, मेरा सरनेम भी ईश्वर है। बोले नहीं, ये वो ईश्वर नहीं है, ये उन ईश्वर को मैं नमामि, मतलब मैं प्रणाम करता हूं जो सच्चिदानंद रूपम जिसका है, और ये जो भी बात मैं कह रहा हूं, रुदंतम ईश्वरम, मुहुर नेत्र ईश्वरम, सांतक नेतम ईश्वरम, ये जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर के साथ हो रहा है। तो ये मत समझना, नहीं तो हमको ये दामोदर लीला सुन के कभी कभी कोई ऐसा सोचता होगा कि अरे ये तो मेरे साथ भी ऐसे होता था बचपन में, मेरी माँ भी पीछे पीछे भागती थी मेरे को खाना खिलाने के लिए या डांटने के लिए, मैं भी ऐसी कार्य करता था, कि मेरे बारे में तो नहीं है। तो सत्यव्रत मुनि कहते नहीं जी, आपके बारे में नहीं है, ईश्वर के बारे में। ये जो लीला चर्चा जो हम लोग कर रहे हैं ये ईश्वर के बारे में, ये भूलना नहीं। तो ये नमामि वर्ड को पकड़ के रखना ईश्वर को, कि ये पूरे दामोदर लीला के अंदर थ्रेड है, नहीं तो रोते हुए बिलखते हुए भगवान जो इस प्रकार से लीला कर रहे हैं, कोई सोच सकता है भगवान रोएगा? यू नो यस्य आज्ञा चक्रति संभृत काल चक्रो, कि जो काल चक्र है वो भगवान की आज्ञा से चल रहा है, सूर्य जो है भगवान की आज्ञा से उदय होता है। अरे ये जो दुर्गा है, ये जो माया है, वो भगवान के अंदर में काम करती है। छाये व यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, ब्रह्मा जी कहते हैं कि सब कुछ जो है वो भगवान के डायरेक्शन में चल रहा है। माया दक्षिण प्रकृति सुयते से चराचरम हेतु नाने न कौनते, भगवान कहते हैं कि मेरे डायरेक्शन में सब कुछ चल रहा है। और वो कहते हैं अर्जुन को इतना ज्ञान देते थे, बोलते रहे अर्जुन इन सब की क्या बात, खाली इतना समझ ले कि ये जो है मत्तः परंतर न अन्यम किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। वो कहते कि पूरा संसार मुझ पे उसी प्रकार से आश्रित है जिस प्रकार से मणि एक धागे पे आश्रित होते हैं, मेरे विपरीत कुछ नहीं है। और वो व्यक्ति, वो पर्सनालिटी, वो भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। और आचार्य टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो लिखा है सत्यव्रत मुनि ने, ये कुछ ऐसे ही नहीं लिख डाला, बहुत इंटेलिजेंटली और बहुत भक्ति से उन्होंने लिखा है। कहते रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मं मृजंतम करम भोज युग्मेना सांतंक नेत्रम। तो बोले अपने हाथों से वो रो रहे हैं ऐसा करते करते, और उनकी आंखों में आतंक हो रहा है, डर नहीं। संस्कृत जो है बहुत ही एकदम विशेष भाषा है, और जैसे एक होता है शब्द भय, भय का मतलब क्या, डर, डर लगा कि किसी चीज का कोई भय है क्या, नहीं। जैसे समझो अगर हमने ऐसा सुना कि गांव में शेर आ गया तो भय लगता है कि हाँ अरे गांव में शेर आ गया, गांव में शेर आ गया, थोड़ा बच के रहना, बच के रहना, ऐसा करके। तो एक वो भय है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग गांव में चल के जा रहे हैं और अचानक सामने वो शेर आ जाता है तो उस सामने प्रत्यक्ष 1-to-1 जब शेर को देख के जो हमारे हृदय के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको आतंक कहते हैं, है कि नहीं। इसके लिए उसका नाम आतंकवादी है। वो पूछते नहीं है गब्बर मैं आ रहा हूं तेरे, एक एक आदमी को चुन चुन के मारूंगा, वो सीधा आते उड़ा देते हैं, आतंकवादी है। तो बोले कि कृष्ण के हृदय के अंदर डर नहीं लग रहा था, उस छड़ी को देख के कृष्ण के हृदय में आतंक हो रहा था, कि आतंक हो रहा था कि भाई कृष्ण एकदम डर रहे हैं उसको यशोदा के। तो इस प्रकार से आतंक के अंदर कृष्ण रो रहे हैं, तो कोई सोचेगा अरे परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे कैसे रोता है, ऐसे कैसे रो सकते हैं। लेकिन सत्यव्रत मुनि लिख रहे हैं कि कराम भोज युग्मेन सांतंक नेत्रम, और मुहुश्वास कंप, इसके श्वास जो उसका कंपन हो रहा है बेचारे से, बोला नहीं जा रहा है कि मैया छड़ी फेंक, उतना भी नहीं वो बोल पा रहा है कृष्ण। करम भोज युग्मेन सांतंक नेत्रम मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रेवं दामोदरं भक्तिपातम। तो बोले कि उस यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया था, किससे, भक्ति से बांध दिया था। तो मैया को बोला अरे पहले छड़ी छोड़, तो यशोदा ने भी सोचा कि अगर ये छड़ी लेके मैं इसके साथ काम करूंगी तो बहुत बुरा होगा, तो उसने छड़ी छोड़ दी और फिर कहा कि नहीं लेकिन तेरे को अभी शिक्षा तो देनी पड़ेगी, और शिक्षा देने के लिए तेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, तो तेरे को मैं बांध देती हूँ। तो यशोदा बांधने के लिए गई। अब यानी ये लीला तो बहुत लंबी है, अगर मैं ऐसे सुनाते जाऊँ तो बहुत लंबा जाएगा, बट मेरा एक एक आँख घड़ी पे भी है। कितना कितना टाइम हम तो डिस्कस कर सकते हैं, उस हिसाब से मैं इसको कट शॉर्ट करूँगा। नहीं अगर सबके पास टाइम, क्योंकि अगर किसी को अगर जाना है तो प्लीज फील फ्री टू गो, बट अगर लास्ट टाइम शुरू भी लेट किया था, लेकिन इफ यू आर ओके देन आई कैन गो इन टू डिटेल और हम लोग डिटेल में बात कर सकते हैं.
करते हैं डिटेल में.
चलो ठीक है, अगर किसी को लेट हो रहा हो, कोई जाना चाहता है तो प्लीज आप.
हाँ तो फिर आधा डिटेल तो फिर कम से कम सुन ही पाएंगे.
ठीक है चलो, नो प्रॉब्लम. तो बेसिकली यशोदा ने सोचा कि कृष्ण को भी शिक्षा तो देनी पड़ेगी, तो यशोदा ने क्या किया कि कृष्ण को बांधने के लिए गई, और बांधने के लिए ऐसा सत्यव्रत मुनि कहते भी है कि गोकुले भ्रजमानम, जब वो कहते हैं कि गोकुलवासी जो है वो केवल कृष्ण और केवल कृष्ण के बारे में ही सोचते रहते हैं, उसके जीवन में दूसरा कोई एक लक्ष्य होता ही नहीं है, है कि नहीं. अभी अगर विपदा भी आती है तो कृष्ण है, कुछ अच्छा भी है तो कृष्ण है. अभी जैसे अघासुर वाले पास टाइम में गोप लोग जब उन्होंने देखा, कह रहे इतनी बड़ी केव कहाँ से आ गई है, कहाँ से इतनी बड़ी गुफा आ गई, और वो सोचे चलो गुफा में घुसते हैं, तो कुछ कुछ गोप लोगों को पता चल गया कि ये गुफा नहीं है, ये अचानक इतनी बड़ी गुफा कैसे आ गई, ये तो कुछ कोई राक्षस है. तो दूसरे ने कहा कि अरे राक्षस है तो भी क्या हुआ, कृष्ण है ना, वो बचाएगा हमको. तो कृष्ण के ऊपर एकदम फुल फेथ है ये गोकुलवासियों का, और गोकुलवासी जो है वो कृष्ण के लिए कुछ भी कर जाते हैं और कृष्ण ही उनका आसरा है. कृष्ण कृष्ण महाबाहो वक्तानाम अभयंकर. तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं थोड़ा एक वर्ष और थोड़ा पहले लेता हूँ. तो जब हमने बात की नमामि ईश्वरम, तो ईश्वर के बारे में बोले चर्चा कर रहे हैं, और सच्चिदानंद रूपम, तो जो ये जो पर्सनालिटी है ये कोई ब्रह्म या परमात्मा नहीं, ये स्वयं भगवान है, और इनका रूप है कैसा है, सच्चिदानंद रूपम. तो कोई भी व्यक्ति अपने रूप के साथ छल नहीं कर सकता है. तो बताते हैं कि ये ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद रूपम अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम. तो कहते हैं नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम. तो लसत कुंडलम का क्या मतलब होता है, तो कुंडल मतलब एक आभूषण है, और एक व्यक्ति आभूषण क्यों धारण करता है, आभूषण क्यों धारण करते हैं हम लोग, सुंदरता के लिए, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति आभूषण यूज करता है. तो कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि अरे आप बोल रहे हो कृष्ण सर्व आकर्षक है, पूरा ही इज ऑल अट्रैक्टिव, लेकिन क्या वो सुंदर नहीं लगते, और उनको भी कुंडल धारण करना पड़ता है, वो भी कुंडल पहनते हैं. तो आचार्य बताते हैं कि लसत कुंडलम का मतलब क्या है पहले समझ लो. तो लसत कुंडलम का मतलब ये नहीं है कि कृष्ण ने कुंडल धारण किए इसलिए कृष्ण जो है वो ब्यूटीफुल लग रहे हैं. कृष्ण तो ब्यूटीफुल है, लेकिन कुंडल कृष्ण के संपर्क में आता है तो कुंडल की सुंदरता बढ़ जाती है. तो हम लोग अगर कुंडल पहनते हैं तो कोई आके बोलेगा अरे माता जी क्या कुंडल पहना है कान के अंदर, कितना अच्छा लग रहा है करके, क्या कुंडल धारण किया है. लेकिन कृष्ण अगर किसी को धारण करते हैं तो कोई आके कृष्ण से नहीं पूछता है, वो कुंडल से पूछेगा कि क्या कान धारण किया है. कान भी पकड़ा तो कैसा, कोई मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड का नहीं, सीधा कृष्ण का है कि नहीं, कि कृष्ण के कान में गया है. तो लसत कुंडलम का यह मतलब होता है कि जीव जब भगवान से जुड़ जावे तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है. भगवान तो अपने आप में सार्थक है ही है, लेकिन कोई जीव कृष्ण से, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ये न केन प्रकार कृष्ण से जुड़ जाना चाहिए. अगर जुड़ गए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, वो करंट पास होते रहेगा. और खैर इसमें तो बहुत लंबी लंबी व्याख्या है, दीर्घदर्शनी टीका पेपर उतनी व्याख्या में मैं नहीं जाना चाहता, नहीं तो और 4-5 घंटे निकलेंगे. लेकिन फिर आगे क्या कहते हैं, लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानम यशोदा भियोलुखलाधवमानम परामृष्टम अत्यंत तो दृत्य गोप्या. तो यशोदा भिलोकम, तो यशोदा से वो डर गए, और हमने डिस्कस किया कि भगवान जो किसी से डरते नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो डर गए. और लाधवमानम परामृष्टम अत्यंत तो दृत्य गोप्या, और उस गोपी ने भाग के क्या किया और कृष्ण को पकड़ लिया. तो भक्ति का अर्थ है पराजय, हमने ये डिस्कस किया. और फिर ये जब उसको बांधने लगी तो कृष्ण बहुत रोने लगे, और रोने भी लिखने लगे, और रोने में जैसे मैं भय के बारे में बता रहा था शायद लास्ट में आपको, तो जब शेर सामने आ जाता है हमारे, तो वो हमारे हृदय में आतंक होता है, तो वैसा आतंक कृष्ण को हो रहा था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो आतंकित हो रहे हैं, और कृष्ण ने सोचा कि अगर मैं बंद गया तो मेरा क्या होगा, है क्या नहीं। तो कृष्ण ने सोचा कि मैं कुछ लीला करता हूँ, तो यशोदा ने क्या किया, वो सोचा कि आज तो मैं तेरे को सजा दूंगी, तो कृष्ण को उखल के पास लेके गई और बोला इसी उखल पे बैठ, तो बोले आज इस उखल के साथ तुझे बांध दूंगी। तो जब बांधने के लिए उसने क्या किया, गाय को बांधने की जो एक रस्सी थी वो उठा ली और उस रस्सी से उखल के पास कृष्ण को लेके गई और कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, लेकिन वो रस्सी क्या हो गई, दो उंगल छोटी पड़ गई। तो उसने क्या किया, नेचुरली दूसरी रस्सी उठाई और वो बांध के और उसको बांधने का प्रयास किया, लेकिन वो रस्सी भी दो उंगल छोटी पड़ गई। ऐसे कई रस्सियां यशोदा ने लेके उसको बांधने की कोशिश की, लेकिन हर रस्सी जो दो उंगल छोटी पड़ती गई तो यशोदा को समझ में नहीं आ रहा था कि कृष्ण तो इतने छोटे से हैं, उनकी कमर भी इतनी छोटी सी है, उखल भी उतना ही है, ये रस्सी बंद क्यों नहीं रही है। और वहां पे सारी गोपी आ गई अपने घर से रस्सी ले लेके, बोला बांधो इसको, बहुत मस्ती करता है। और एक रौप्य महोत्सव हो गया वहां पे, और इतनी सारी रस्सियों से भी कृष्ण को बांधा नहीं जा सका। और यशोदा हंसने लगी, बोले ये बांध क्यों नहीं जा सकती हो। तो कृष्ण यहाँ पर अपनी लीला कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि अपनी ऐश्वर्य शक्ति जो थी वो उस पर हावी हो गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि अपनी मैया जो है वो इतनी मेहनत कर रही है तो अभी थक गई है, ऐसा भागवत में वर्णन आता है कि पूरा पसीना पसीना हो गया यशोदा को, इतनी थक गई। तो उसने सोचा मैया को इतनी मेहनत नहीं करवानी चाहिए, चलो अभी मैं बंद जाता हूँ। तो वो कृष्ण बंद गए। तो आचार्य कहते हैं कि ये जो दो उंगल छोटा है इसका क्या मतलब है, कि भगवान की भक्ति के अंदर ये दो चीज बहुत आवश्यक है। एक उंगल है हमारा अपना प्रयास, द एंडेवर ऑफ ए डिवोटी, भक्त का प्रयास, और दूसरी है भगवान की कृपा। तो जब दोनों का समन्वय होता है तभी भगवान बंधते हैं, नहीं तो भगवान बनते नहीं है। और वैसे भगवान को कोई बांध नहीं सकता। दुर्योधन ने बांधने की कोशिश की थी जब भगवान शांति दूत बन के गए थे, लेकिन वो भी नहीं बांध पाया। भगवान ने कहा कि कोशिश करके देख लो अगर मुझे बांधना चाहते हो तो। तो भगवान किसी से पकड़े नहीं जा सकते, किसी से बंधते नहीं है, लेकिन प्रेम का रज्जू इतना स्ट्रांग होता है कि भगवान उससे ही बंध जाते हैं। तो भैया भगवान मैया यशोदा की उस रस्सी से नहीं बंधे, पर उसके प्रेम से बंध गए कि माँ इतना प्रयास कर रही है मुझे बांधने का, चलो मैं बंध जाता हूँ। और तब कृष्ण उस प्रेम की रज्जू से बंध गए। तो भगवान हमको यहाँ पर एक और एक शिक्षा ऐसा दे रहे कि देखो मैं रेडी हूँ बंधने के लिए, हालांकि मुझे कोई बांध नहीं सकता, लेकिन अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो उस प्रेम के रज्जू से मैं बंध सकता हूँ, तो मुझे बांधने का प्रयास करो। दामोदर लीला जो है एक हमको ये भी चीज बताती है कि कैसे भगवान को अपने प्रेम से अपने बंधन में हम लोग बांध सकते हैं। तो जब यशोदा ने उसको बांध दिया और अपना काम करने के लिए चली गई, तो कृष्ण उधर बंधे बेचारे खड़े हैं, और वहां बंधे तो उनके दोस्त लोग वहां पर आ गए, तो देखे अरे हमारा लीडर तो इधर बंधा हुआ है। तो बलराम आके एकदम गुस्सा में चिल्लाने लगा, बोला अरे कौन है वो जिसने मेरे भाई को बांध दिया, आज तो उसकी खैर नहीं, तो कौन है, ऐसा करके चिल्ला के एकदम बोलने लगा कि जिस किसी ने भी मेरे भाई को बांधा है उसको मैं देख लूंगा। हाँ, ये सब पिक्चर में बोलते हैं कि तूने जिसको मारा वो मेरा भाई था, ऐसा। तो आके चिल्ला के बोलने लगा, और कृष्ण ने कहा कि मैया ने बांधा, मैया ने बांधा है। बलराम डर गया, तो जाके बोलने लगा यशोदा, बोला तू चिंता मत कर मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो पहले खुद खोलने की कोशिश किया, खोल नहीं पाया, और यशोदा को जाके बोलने लगा बलराम कि अरे मैया तूने कृष्ण को बांधा। यशोदा बोला हाँ बांधा, बोल। तो बोला अरे तू जानती नहीं कृष्ण कौन है। बोला कौन है। बोला ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। बोले अरे कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो आदि है अनंत है, सब कुछ उससे ही निकलता है, जन्मादि इससे यथा सत्यम परम धीमहि। अरे ऐसे कृष्ण को तूने बांध दिया। तो यशोदा आंख फाड़ फाड़ के दिख रही, क्या हो गया इसको, क्या बोल रहा है आज बलराम। तो मैया बोली अच्छा और तू कौन है। तो बोला अरे मैं बलराम हूं, मैं कृष्ण का पहला विस्तार हूं, और पहले कृष्ण से मैं निकलता हूं, और मेरे बाद में अनिरुद्ध प्रद्युम्न शंकरषण वासुदेव सभी बाहर निकलते हैं, उनसे महाविष्णु निकलते हैं, शिरोदक्षा विष्णु निकलते हैं, कारणोदक्षा विष्णु निकलते हैं, और उनसे सारे सारे जो भगवान के अवतार है वो बाहर आते हैं। तो यशोदा को गुस्सा आ जाता है सुन के, वो छड़ी उठाती है, बोलती है सारे के सारे अवतार को क्या मेरे घर में जन्म लेना था। बोले भाग यहां से, तेरे को ही बांध दूंगी। तो बेचारा बलराम भागता है और जाके कृष्ण से कहता है कि भैया प्रयास किया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। तो कृष्ण का कोई बात नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ठीक है तूने काम किया ना, मैं देख लूंगा, जाओ तुम लोग खेलने को जाओ। तो जाते हैं, तो ये प्रेम का जो रज्जू है, प्रेम का बंधन है, उसको बलराम भी नहीं काट सकता। सोचो एक बार मैया ने बांध दिया, मतलब बांध दिया। तो कृष्ण वहां बंध गए और बंधे बंधे ऐसा सोच रहे हैं कि मैं भी क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उनकी नजर गई उस दो वृक्ष पे, जो उस आंगन में लगे हुए थे, और वो दो वृक्ष को उन्होंने देखा तो उनको कुछ याद आ गया, उनको नारद मुनि की याद आ गई कि अरे नारद मुनि ने इसके उद्धार की बात की थी और अब तक मैंने इसका उद्धार नहीं किया, तो आज मुझे इसका उद्धार करना चाहिए। तो ऐसा होता है कि कुबेर के दो पुत्र मणिग्रीव और नल कुबेर, वो दोनों मदांत हो गए थे, पैसा इतना, क्योंकि कुबेर तो खजांची है वहां का, ही इज व्हाट फाइनेंशियल कंट्रोलर, जो है पूरा पैसा ट्रेजरर है वो वहां पे, तो इतना उसके पास पैसा था। तो उसके बेटे जो है वो मद में पागल हो गए थे और उस पागलपन के अंदर वो गलत काम करते थे। तो नेचुरली जिसके पास अगर अच्छा नाम है, अच्छा पोस्ट है, अच्छा है, ये जो होता है ना, ये नेम फेम एडोरेशन डिस्टिंक्शन और पोस्ट जो है, व्यक्ति जब पोस्ट पे आता है तो बहुत कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो महाराज बोलते हैं पॉपर इज ऑल्सो प्राउड ऑफ हिज ओन पैनी, के जो 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 एरिया कंट्रोल होता है, इसलिए बोलते ना कि अपने एरिया में तो कुत्ता भी शेर हो जाता है ऐसा। तो उस प्रकार से जैसे उनका बहुत पैसा आ गया तो वो लोग ने गलत काम करना शुरू किया और मंदाकिनी गंगा के अंदर जाके पाप करने लगे। अभी गंगा के अंदर लोग जाते हैं पुण्य कमाने के लिए, अपना पाप धोने के लिए, लेकिन वो लोग गंगा में जाके पाप करने लगे। और वो कहते हैं कि शिवस्य अनुचरो, वो शिव जी के अनुचर थे, उनके साथ में थे कैलाश में, और वहां जाके वो पाप करने लगे। तो नग्न लेडीज के साथ, औरतों के साथ वो वहां पर स्नान कर रहे थे और वहां से नारद मुनि निकले। तो साधु को देखकर हमेशा प्रणाम करना चाहिए, साधु का सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो इतने पागल के रूप में मदांत हो गए थे कि नारद मुनि गए तो उनका, उन्होंने सम्मान तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को कवर तक नहीं किया। तो जब औरतों ने देखा, जो लेडीज थी उन लोगों ने, अप्सराओं ने, तो उन्होंने अपने आप को ढक लिया, अपना शरीर ढक लिया नारद मुनि, लेकिन ये लोग ऐसे ही थे बेवड़े के जैसे बैठे थे। तो नारद मुनि को बहुत दया आई उनको देख के, बोला अरे ये कुबेर के बच्चे, कुबेर के पुत्र ऐसे कि इनको तो एक मतलब स्टैंडर्ड, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको जहाँ पे ज्यादा बोलते ना वो पावर दिया जाता है, पावर कम्स अलॉन्ग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बोले इनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा होने की, ये खराब कर रहे हैं, इनका तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो नारद मुनि ने सोचा, वहां पे भागवत ऐसा बताता है कि इमीडिएटली नारद मुनि, ऐसा नहीं था गुस्सा आया और छाप, नारद मुनि को गुस्सा नहीं आया था, नारद मुनि ने सोचा बहुत देर तक कि कैसे इनको ठिकाने लगाऊं। और फिर नारद मुनि ने सोचा इनको ठिकाने लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये कि श्राप दे दो इसको, और इनको नग्न रहना पसंद है तो वृक्ष बन जाओ, जाओ। तो नारद मुनि ने उनको श्राप दे दिया और कहा कि अच्छा तुमको नग्न रहना पसंद है, जाओ वृक्ष बन जाओ। तभी उनकी बुद्धि ठिकाने आई और नारद मुनि से माफी मांगने लगे, और नारद ने कहा कि अभी श्राप तो तेरे को दे दिया मैंने, लेकिन ये श्राप तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स वरदान बनेगा और तुम वृक्ष बनोगे, लेकिन कहाँ वृक्ष बनोगे, नंद बाबा के आंगन में। तो वो बाद में वहीं पे वृक्ष बने, यमल अर्जुन के वृक्ष में, और कृष्ण को ये बात याद आई कि इनका उद्धार करना है। तो कृष्ण उस उखल को घसीटते हुए और वो दो वृक्ष के बीच में फंस गए, उखल फंस गया, कृष्ण आगे निकल गए और थोड़ा सा धक्का लगाया और वो जड़ के साथ उन्मूलम सीधा। इसके लिए भागवत क्या कहता है कि तापत्रयन उन्मूलनम, कि वो मूल से उखाड़ देता है ये जो है हमारा पाप वाप जो सब कुछ है। सो वो पूरा जड़ से उखाड़ दिया उस वृक्ष को और धड़ाम करके बहुत जोर से आवाज आई और आवाज करके वो वृक्ष जोर से गिरे। तो जब वो वृक्ष गिरे तो अंदर से सारे लोग दौड़ते दौड़ते आ गए, देखने लगे अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये कृष्ण पे विपदा आ गई क्या वापस से। और यशोदा दौड़ के आके कृष्ण को उठाने लगी तो कृष्ण उसके हाथ में नहीं आए, नंद बाबा ने कृष्ण को उठाया, और यशोदा जब लेने जा रही थी तो वो कृष्ण उसके पास नहीं जा रहे थे। तो यशोदा ने कहा कि अरे तू मेरे पास नहीं आता है, तो नंद बाबा ने कहा कि तुझे खिलाएगा कौन, तो बोला तू बाबा, तुझे नहलाएगा कौन, बोला तू बाबा। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसी कोई विपदा घटती थी तो ब्रजवासी उसको अपना पुत्र मानते थे, तो वो उनके बहुत कुछ करते थे, उसकी नजर उतारते थे, उनको गाय के मूत्र से उसका छिड़काव किया जाता था, गोबर लीपा जाता था कृष्ण के ऊपर। तो गाय बहुत प्रिय है कृष्ण के, तो गाय को कृष्ण पशु नहीं मानते है कि नहीं। तो आज ये बहुत दुर्भाग्य है कि गाय कट रही है, और मथुरा और नवद्वीप में भी गायें कट रही है, दूसरी जगह की तो बहुत दूर की बात है कि मथुरा में स्लॉटर हाउस बन गया है। लेकिन कृष्ण के लिए एक बार यशोदा ने जूते बनवाए, तो बोले अभी तू जंगल में जाना शुरू किया है गाय चराने के लिए, जूते पहन के जाया कर। तो कृष्ण का नहीं, मैं जूते नहीं पहनूंगा, गाय के लिए किधर जूते हैं। तो यशोदा ने कहा कि अरे पशु थोड़ी जूते पहनते। तो कृष्ण ने एकदम सिर उठा लिया घर, बोला पशु बोला ही कैसे, मेरा आराध्य देव है गाय। तो बोले जब तक गाय को पूरा बनाओ, अभी 900,000 गाय को किधर जूते बनाएंगे, वो भी चार पैर उनके, तो 9x4 इतने सारे जूते बनाने पड़ेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि अगर मेरी गायों के लिए जूते नहीं है तो मैं भी जूते नहीं पहनूंगा, और कृष्ण ऐसे ही जाने लगे। तो जब गायों ने देखा कि अरे हमारे कृष्ण हमारे लिए जूते नहीं पहन रहे हैं, उनके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे, पत्थर चुभेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपने खुरों से मार मार के पूरा ब्रज का जो जमीन था उसको रमन रेती बना दिया पूरा एकदम। तो रमन रेती का उद्गम स्थान वो है। तो एक बार हमको दीनबंधु प्रभु बोल रहे थे कि अभी मैं आपको उस रमन रेती के बारे में बताऊंगा जिसका रेती आपके जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर से भी सॉफ्ट है। तो ये गायों के प्रति भगवान का इतना प्रेम था। तो इस प्रकार से कृष्ण को यशोदा ने फिर ले लिया और सारे के सारे ब्रजवासी जो है वो फिर वापस से हंसने लगे कि देखो अरे कृष्ण ने क्या लीला की। और उन लोगों ने कहा बच्चों ने कि अरे हमने देखा दो बड़े बड़े यहाँ से पता नहीं कोई देवता लोग निकले, कृष्ण की पूजा पूजा करके वो लोग चले गए। तब उनको समझ में आया कि ये इस प्रकार से कृष्ण ने कुछ लीला की रहेगी। और रोज कृष्ण इस प्रकार से लीला करते थे। और इति दृक्स्व लीला भीर आनंद कुंडे, आगे बोलते हैं सत्यव्रत मुनि कि इस प्रकार से वो लीला करके क्या करते थे, सबको आनंद के कुंड में डुबा देते थे। और इतने आनंद के कुंड में डुबाते थे कि कोई उधर से उभर नहीं पाता था और कोई उभरना भी नहीं चाहता था। नहीं तो हम लोग अभी कौन से कुंड में है, दुखालय। हम लोग स्विमिंग पूल में गिरे हैं लेकिन कौन सा है, ये दुख का स्विमिंग पूल है, ये सुख आनंद का स्विमिंग पूल नहीं है। तो इस दुख के स्विमिंग पूल से भगवान हमको निकाल के और आनंद के स्विमिंग पूल में डालना चाहते हैं इस दामोदर लीला के द्वारा। और वो कहते हैं कि भक्तिर जितैत्वम, कि मैं जो है वो केवल भक्ति से जीता जाता हूँ, भक्ति से बंधा जाता हूँ, और तुम अभी जो है वो इस भव सागर के अंदर गोते लगा रहे हो, खा रहे हो इस प्रकार से, और इतना बड़े दोष के सागर में गिरे हुए हो, उस सागर से उठा के मैं क्या करना चाहता हूँ, तुमको आनंद कुंडे, आनंद के कुंड में डालना चाहता हूँ, तुम आ जाओ मेरे साथ में। तो इस प्रकार से भगवान दामोदर की जो लीला है बहुत ही एनचैंटिंग है। और इसमें तो अभी 2-3 वर्ष हम टच किए और भी 7 वर्ष है जो कभी हम बाद में करेंगे क्योंकि इतना लंबा अभी नहीं जाना चाहते, लेकिन बहुत ही आनंद है, भगवान जो है वो आनंद में डुबाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि तारामृत कृष्ण, कृष्ण का जो ब्यूटी है वो एकदम अमृत के समान है, और जिसके अंदर भगवान जिसको डुबा देता है वो फिर उभर नहीं पाता है। और सत्यव्रत मुनि जब ये प्रार्थना करते करते आगे वो कहते भी है कि ये जो प्रार्थना मैं कर रहा हूँ तो मैं, अच्छा इसमें एक और पॉइंट है, कृष्ण बंधे हुए हैं लेकिन दूसरे बंधे हुए को मुक्त करवा रहे हैं। तो ये जनरली होता नहीं है कि एक जो मुक्त आदमी है वही किसी को मुक्त करवा सकता है, एक कैदी दूसरे कैदी को थोड़ी मुक्त करवा सकता है, लेकिन भगवान का नाम मुकुंद है। तो वो जो है भगवान क्या कर रहे हैं कि खुद बंधे हुए हैं लेकिन अपना बंधा हुआ सिचुएशन के अंदर से भी दूसरों का उद्धार कर रहे हैं। सोचो, तो एक और ये यहां से हमको शिक्षा मिलती है कि भगवान भले कैसे भी है तो इसके लिए कहते हैं कि नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। तो कहेंगे कि देखो मैं तो दामोदर हूं, मेरे को तो बांध के रखा है, मैं कैसे तुम्हारा उद्धार करूं। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप भले ही दामोदर हो लेकिन आप विष्णु हो और आप उद्धार कर सकते हो, और कुबेर के पुत्र उसके गवाह है कि आपने उनका उद्धार किया था, आप मेरा भी उद्धार करो। तो सत्यव्रत मुनि एक पिटीशन दे रहे भगवान को, कहते हैं कि आप जो है मेरा उद्धार करो प्लीज। और फिर वो कहते हैं कि उद्धार करने के साथ साथ मेरे को भक्ति दो, लेकिन कैसी भक्ति चाहिए, धनम देही जन्म देही जैसा भक्ति नहीं चाहिए, कि जैसे घी भी बहुत प्रकार के होते हैं ना, डालडा घी होता है, ये घी होता है, लेकिन वो बोलते हैं प्योर। तो क्या कहते हैं कि तथा प्रेम भक्ति काम में प्रयच्छ, कि मेरे को वैसी भक्ति चाहिए जो आपने कुबेर के पुत्रों को दी, मेरे को साधारण भक्ति से मैं मानूंगा नहीं। तो कृष्ण कहते हैं कि देख भैया मैं तो छोटा सा बालक हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो बोले नहीं, आप छोटे बालक नहीं हो, आप विष्णु हो, अनंत हो। नमो देव दामोदरा अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख जालाभि मग्नम, कि आप जो हमारा जो दुख है उसको सब निकाल दोगे, और इसके लिए मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। और आगे वो कहते हैं कुबेर आत्म जो बद्ध मूर्ते व यदवत, कि मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से आपको, आप हमारे पास सर्टिफिकेट है, हम जानते हैं कि किस प्रकार से आपने कुबेर के पुत्र का उद्धार किया, आप मेरा भी उद्धार करो। तो कहते कुबेर आत्म जो बद्ध मूर्ते व यत्व तया मोची तो भक्ति भाजो कृतज्ञ। और ये सब कहने के बाद में लास्ट में वो एक कृष्ण को कहते हैं, मतलब कृष्ण को कहते हैं कि भाई मेरे को बचाओ, मेरा उद्धार करो, मेरे को भक्ति दो, और कृष्ण नाना नाना करते, क्योंकि कृष्ण किसी को भी मुक्ति दे देते लेकिन भक्ति इतना आसानी से नहीं देते। लेकिन कृष्ण की एक कमजोरी है जो सत्यव्रत मुनि जानते हैं, और इसके लिए फिर वो लास्ट श्लोक में उस कमजोरी को सामने लेके आते हैं कृष्ण का, कहते हैं कि ये जो तेरी कमजोरी है ना, अभी मैं इसके ऊपर प्रहार करूंगा और तू ना नहीं कह सकते कृष्ण, मेरे को देना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि नमस्ते स्तु दामने स्फुर दीप्ति धामने त्वदीयो दरायाथ विश्वस्य धामने। तो बोले कि नमस्ते स्तु दामने, उस दाम मतलब उस रस्सी को मैं नमस्कार करता हूँ जो तुम्हारे पेट पर बंधी हुई है, कि किसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हारे पेट पे आके बंध जावे, उस पेट के अंदर जिसमें सारा ब्रह्मांड सारी सृष्टि है उस पेट के ऊपर तुम्हारी रस्सी बंधी हुई है। नमस्तेस्तु दामने स्फुरदीप्ति धामने त्वदीयो दरायात विश्वस्य नामने, के उस उधर के अंदर पूरा विश्व है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। और इतना करने के बाद वो कहते हैं कि अभी जो है आप मना नहीं कर सकते, आपने सारी चीज मना करते हो लेकिन एक चीज तो आप मना कर ही नहीं पाओगे के नमस्तेस्तु दामने स्फुरदीप्ति धामने त्वदीयो दरायात विश्वस्य धामने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नंतलीलाय देवाय तुभ्यं। तो कहते हैं कि मैं उस राधा रानी को नमस्कार करता हूँ, नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, कि जो तुम्हारी प्रिय है प्रियतमा राधा रानी, ये तो तुम मना नहीं कर पाओगे ना, तो मैं मेरी अर्जी दे रहा हूँ। तो ऐसा बोलते हैं कि एक होता है प्रसाद और एक होता है महाप्रसाद, तो प्रसाद ऊपर से दिया जाता है, महाप्रसाद नीचे से दिया जाता है। तो देखिए वो दे रहे हैं और पिटिशन लिख रहे हैं और उस पर हस्ताक्षर करके और साथ में कुछ एक घूस दे रहे हैं कृष्ण को कि देख अभी मान लो मेरी बात। तो ये जो है वो कहते हैं कि ये डेजर्ट है, कि पूरा इतना अच्छा खिलाने के बाद सत्यव्रत मुनि डेजर्ट चखा रहे हैं और कहते हैं कि यू नो नमो राधिकाई त्वदीय प्रियाय, कि तुम्हारी प्रिय राधा रानी है और क्या प्रिय है तुमको, लीला प्रिय है, राधा प्रिय है और राधा के साथ जो लीला करते हो वो तुमको प्रिय है, तो तुम मना नहीं कर पाओगे, उसकी कसम देता हूँ मैं, बस मेरे को भक्ति दे दो भगवान। तो नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। तो कहते हैं कि उस राधा रानी के लिए, तो ऐसे बताते हैं कि भगवान कृष्ण शायद किसी को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन अगर राधा रानी ने कृष्ण को कह दिया, तो एक बार किसी ने पूछा था कि राधा रानी का जैसे चौपाटी मंदिर में इस प्रकार से हाथ है, तो महाराज को पूछा कि ऐसे क्यों है, तो बोले कि राधा रानी कह रही है कि इस डिवोटी को कृष्ण एक्सेप्ट कर ले। तो बोले अगर एक्सेप्ट कर लिया, राधा रानी ने कह दिया, तो कृष्ण उसको ठुकरा नहीं सकते, अपने आप में मना कर देंगे, लेकिन कृष्ण ने रिकमेंड कर दिया, राधा रानी ने रिकमेंड कर दिया, तो कृष्ण कुछ नहीं कर सकते। तो बोलते हैं कि मैं रिकमेंडेशन लेके आया हूँ, प्लीज एक्सेप्ट मी। तो इसके लिए भक्तों का, गुरु का, राधा रानी का जब तक रिकमेंडेशन हमको नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए कहते हैं कि राधा कृष्ण की भक्ति सर्वोत्तम है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बिना राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे और बिना नित्यानंद के चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए हमको गौरनिता की आराधना करते हुए भगवान राधा कृष्ण की सेवा करनी है, तब जाके कहीं हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे और भगवान दामोदर को प्रसन्न कर पाएंगे। और इस दामोदर के महीने में, कार्तिक महीने में, हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि जो भक्ति आपने उस कुबेर के पुत्रों को दी, वैसी भक्ति भगवान आप मेरे को भी दे दो, और मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप धीरे धीरे हटाओ और प्रेम भक्ति जो है वो प्रेम भक्ति आप मुझे प्रदान करो। हालांकि मेरी कोई योग्यता नहीं है उस प्रेम भक्ति को लेने के लिए और ना ही किसी चीज के बारे में, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो, कर्तुम अकर्तुम सदा कर्तुम इत प्रभु, जो प्रभु है वो कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए बोले कि आप कर सकते हो, तो आपके लिए हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना करते हुए हम दामोदर का ये जो पूरा महीना है उसमें हम भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा और दो कुछ भी हम प्रचार आदि कर सकते वो करने का प्रयास करेंगे, इससे भगवान शायद हमारे पे प्रसन्न होंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम किसी का अपराध नहीं करें और भगवान की भक्ति करते हुए हम लोग सब साथ में आगे बढ़े। सो वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। श्री राधा दामोदर भगवान की
जय,
श्री गौरांग महाप्रभु की
जय,
नित्यानंद प्रभु की
जय,
श्रील प्रभुपाद की
जय,
गौर प्रेमानंद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर योर काइंड पेशेंस लिसनिंग एंड सच ए लॉन्ग यू नो क्लास, प्लीज फॉरगिव मी, बट आई होप
सबके यहाँ पे आपको थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे तरह से ये लीला सुनाई हम लोगों को,
थैंक यू वेरी वेरी मच, क्योंकि सुनाने के लिए आप लोग बैठे इसलिए मैं इंतजाम में सुना पाया,
थैंक यू।